हम लोग आज भगवद गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, उसकी व्याख्या थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पीछे बोलिए, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम
मन्यते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धया
परम भावम
परम
अजानन्तो
भावम अजानन्तो
ममाव्यम अनुत्तमम
ममाव्ययमनुत्तमम
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम
मन्यन्ते माम बुद्धयः
मन्यन्ते माम बुद्धया
परं भावं
परं
अजानन्तो
भावम अजानन्तो
ममाव्ययम् अनुत्तमम्।
ममाव्ययम अनुत्तमम।
तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं, इसका थोड़ा बेस कम कर दीजिए स्पीकर का। भगवान ये कह रहे हैं कि अगर किसी को आता है तो अगर नहीं आपको इसको आता हो उसको टच कीजिए। इसीलिए से गीता किसी को आती उसी को बोलना चाहिए, नहीं तो बेस की जगह ट्रिबल ट्रिबल ठीक कर दीजिए और बेस कम कर दीजिए। हरे कृष्णा, अभी ठीक है बच्चे। तो यहाँ थीम क्या है? ये विचार ये है कि क्या भगवान निराकार से साकार रूप में प्रस्तुत हुए हैं? कुछ लोग इस प्रकार से सोचते हैं, लेकिन भगवान ऐसे लोगों को बोलते हैं अबुद्धि। उनके पास न सिर्फ कम बुद्धि है, बुद्धि है ही नहीं। अगर कुबुद्धि बोलते तो बोलते बुरी बुद्धि है, और मतलब क्या बोले, अल्प बुद्धि बोलते तो बोलते कि बुद्धि थोड़ी कम है। लेकिन यहाँ शब्द है अबुद्धया, मतलब बुद्धि है ही नहीं। क्यों बुद्धि नहीं, इसमें विचार करेंगे। तो देखिए, जब शब्दों को अर्थ को देखिए, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, कुछ लोग सोचते हैं मन्यते मामा बुद्धया, जो लोग के पास बुद्धि है ही नहीं वे भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि पहले वे निराकार थे और उस निराकार से अब साकार आया है। और ये आप देख सकते हैं, प्राय भारत में इस प्रकार की धारणा है कि अंततो गत्वा जो परम सत्य है वह निराकार है और उसी से साकार रूप हमारे सामने आए हैं। और वह ऐसा क्यों सोचते हैं? तो भगवान कहते हैं परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं समझते। प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद किए सत्ता को, सत्ता मतलब होता है अस्तित्व। सत्य के बहुत सारे अर्थ हैं, हम टीका में पढ़ेंगे और उसको आप लोग देखिएगा कि भाव का अर्थ बहुत तरह से ले सकते हैं और भगवान के ऊपर सभी घटित होगा और उन सभी के बारे में वो नहीं जानते। भाव का एक अर्थ तो हो गया सत्ता, परम सत्ता मतलब परम अस्तित्व, कि भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं, जन्मादि अस्य यतः, वह नहीं जानते। निर्विशेष ब्रह्म के भी स्रोत वही हैं, वह नहीं जानते। परम भावम अजानंतु, नहीं जानने के कारण क्या नहीं जानते हैं? कैसा भाव है भगवान का? तो कह रहे हैं मम अव्ययम अनुत्तमम, मैं अव्यय हूं, अनश्वर हूं, अर्थात शाश्वत हूं, ये नहीं समझते। कुछ लोग सोचते हैं कि वाकई सोचते हैं कि भगवान कृष्ण को बहेली ने मार दिया था। बिल्कुल बिल्कुल कन्विंस्ड हैं कि बहेली ने उनको मार दिया था और उनके वंश की कथंस इसलिए हो गया था क्योंकि उन्हें महाभारत का युद्ध कराया था। और अनुत्तमम, शाश्वत तो जीव भी है, शाश्वत तो जीव भी है, ये तो हमारी भी सत्ता इस प्रकार से है। लेकिन भगवान का भाव क्या है, सत्ता क्या है? अनुत्तमम, उनके जैसे, उनसे उनसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं, उनसे परे कोई व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए, और परम का अर्थ और भी है कि परम का अर्थ है प्रकृति के परे, इस जगत के परे। तो हम लोग उसको आगे टीका पढ़ते हैं। प्रभुपाद, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। गीता भूषण टीका, वे लोग कितने अयोग्य हैं जो मुझे छोड़कर देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान इस बात को बोल रहे हैं, वे बुद्धिहीन हैं क्योंकि उपनिषदों को जानते हुए भी उनमें मेरे प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप वे कभी भी मेरे असली स्वभाव को नहीं समझ सकता। बहुत महत्वपूर्ण बात ये बोल रहे हैं। एक्चुअली जिसमें एक श्लोक कोट किया जाएगा कि आपकी कृपा प्राप्त करके ही व्यक्ति आपको समझ सकता है, उसमें भी, उसकी टीका में भी बलदेव विद्याभूषण की टीका है, भक्त नंदनी, टेंथ कैंटो में। और उसमें भी यही बात बोलते हैं कि केवल उपनिषद को पढ़ने मात्र से आप भगवान को नहीं जान सकते, जब तक श्रवण कीर्तन भक्तों के संग में ना किया जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है और कृपा के बिना तत्व ज्ञान होता नहीं है, भगवान की पूजा नहीं होती है। तो इसलिए केवल उपनिषद का शुष्क ज्ञान अपनी शक्ति से कुछ पढ़ता रहे और सोचे कि भगवान के स्वरूप को समझ जाएगा, नहीं समझ पाएगा, अपितु उपनिषद पढ़ करके वह यही समझेगा कि परम सत्य निराकार है। उपनिषदों में सीधे सीधे भगवान का वर्णन नहीं होता, कुछ ऐसे उपनिषद हैं जैसे गोपाल तापनी उपनिषद, उसमें भगवान का वर्णन है, लेकिन अन्यथा अन्य उपनिषद को पढ़ करके व्यक्ति यही समझता है कि भगवान निराकार है। ये सत्य बात है। हम भरतपुर में एक प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां एक भक्त बता रहे थे किस प्रकार से उन्हें संस्कृत पढ़ने के मतलब पढ़ना था, उनको पीएचडी वगैरह कर चुके हैं, पीएचडी तो नहीं किया लेकिन एमएम वगैरह किया है, खूब पढ़ा हुआ है, तो कहते सब पढ़ा है हमने, उपनिषद ईशोपनिषद ये वो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण है ये समझ में नहीं आया था। ये तो प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ के समझ में आया, गीता भी पढ़ चुके थे। अब देख लीजिए, गीता पढ़ा है, सारे उपनिषद पढ़ लिए, वेदांत पढ़ लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। तो समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि टीचर को भी समझ में नहीं आया था। ये भी स्वाभाविक सी बात है कि वो स्टूडेंट के रूप में पढ़ रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि टीचर को भी समझ में नहीं आया, और टीचर को क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि उनके टीचर को समझ में नहीं आया। तो न समझने वालों की परंपरा यह है बनी हुई है, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त है उनको।
गीता में तो साफ है ना कि भगवान कृष्ण,
यही तो बात है, गीता में साफ है तो फिर क्यों नहीं देख पाते? क्यों? जैसे अभी ये बात आगे आएगी,
वो पीएचडी और एमए भी कर रहा
है, पीएचडी भी कर लिया, एमए भी कर लिया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कृष्ण भगवान है। ये कितना आश्चर्य होता है ना, लेकिन ये हम वाकई होते हुए देखते हैं। अभी मुझे भक्त ने एक प्रश्न किया कि आर्य समाज के लोग वेद पढ़ते हैं लेकिन गीता और भागवत को नहीं मानते। कितना आश्चर्य की बात, वो ये नहीं समझ पा, वो कहते हैं वेदों का वर्णन कृष्ण में कहाँ है, कृष्ण का वर्णन वेदों में कहाँ है, जबकि भगवान गीता में कह रहे हैं वेदों का प्रयोजन मुझको समझना है। तो ये दिखाता है, एकदम स्पष्ट दिखाता है कि ज्ञान की धारा भगवान प्रकट करते हैं। सीधा स्वामी पाद इस बात को बोलते हैं, अरे भाई वो नहीं जानते हैं तो आप जनवा दीजिए। उसका लिंक है अगले श्लोक जो हम आगे चर्चा करेंगे कि नहीं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं भी अपने आप को प्रकाशित नहीं करता। उपनिषद पढ़ रहे हैं लेकिन भगवान वो ज्ञान का करंट चालू नहीं करते, क्योंकि कृपा नहीं है उनकी, उनकी भगवान के प्रति प्रेम नहीं। एक भक्त की बात मुझे आ रही थी, कह रहे ईशो उपनिषद नहीं इश्को उपनिषद होना चाहिए। मतलब उस उपनिषद को पढ़ करके भगवान से इश्क प्रेम हो जाना चाहिए, लेकिन भगवान से प्रेम कुछ नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार का वर्णन ही नहीं करते। अब देखिए, ओम पूर्णमिधः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये तो समझ लिया कि पूर्ण से पूर्ण आता है, पूर्ण जो आता है वह भी पूर्ण है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि वह पूर्ण कृष्ण कौन, कृष्ण है। कृष्ण का नाम जो है उस उपनिषद में कहीं नहीं आता। प्रभुपाद जी उसको जब अनुवाद करते हैं तो समझाते हैं कि एक व्यक्ति है भगवान कृष्ण, और नहीं तो पूर्ण मतलब समझेंगे गोला गोल रोशनी जो वही उसे पूरा जगत आया। यस,
पूर्ण पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमिदम,
हाँ
प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि कृष्ण है पूर्ण।
यस,
तो प्रभुपाद जी ने मतलब किस बिहाफ पे,
प्रभुपाद बिहाफ क्योंकि भागवत क्योंकि भक्त है वो समझते हैं कि पूर्ण किसकी बात की जा रही है।
उन्होंने प्रमाण तो लिया।
देखिए पहली बात तो यह है कि अगर पूर्ण की ही बात करें तो अगर किसी वस्तु में अगर वो सब कुछ का स्रोत है, पूर्ण से पूर्ण आया है, तो इस जगत में हम रूप देखते हैं कि नहीं। अगर वो पूर्ण निराकार है तो उसमें अपूर्णता का दोष लग जाएगा क्योंकि उसके पास आकार नहीं है। तो पूर्ण मतलब उसका निराकार स्वभाव भी होना चाहिए और साकार स्वभाव भी होना चाहिए। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं थोड़ा एक फिलोसफिकल बात बोलना चाहता हूं, थोड़ा धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। अगर पूछा जाए कि अंधकार और रोशनी प्रकाश में किसकी सत्ता मुख्य है, तब क्या बोलेंगे? रोशनी की, यानी अंधकार का अर्थ है रोशनी का अभाव। रोशनी का अर्थ ये नहीं कि अंधकार का अभाव, प्रकाश प्रकाश की सत्ता अंधकार पर निर्भर नहीं करती है। तो मुख्य गुण क्या हुआ? आकाश, सॉरी प्रकाश, ना कि अंधकार। उसी प्रकार से अगर निराकार कहें तो उसका अर्थ क्या हुआ? आकार का अभाव। तो आकार होना ये मुख्य गुण है और निराकार होना यह है गौण गुण है। गौण समझते हैं, सेकेंडरी गुण है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। तो परम सत्य के पास सारे मुख्य गुण होने चाहिए और गौण गुण भी होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आप परम सत्य से सारी प्राइमरी गुण हटा दोगे तो परम सत्य रहा कहां? तो परम सत्य में मुख्य गुण होना चाहिए। तो मुख्य गुण क्या है? आकार। समझ में आ रहा है? और निराकारता क्या है? वह गौण गौण गुण है, वह भी भगवान का है, ब्रह्म है, भगवान का गुण है, लेकिन भगवान का मुख्य गुण क्या है? साकार। तो मुख्य गुण से गौण गुण आते हैं। भाई जैसे सूर्य है, सूर्य एक व्यक्ति है, उनके गोला है और एक प्रकाश है, तो प्रकाश तो सूर्य पे आधारित है ना, सूर्य तो प्रकाश पे आधारित नहीं है। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये थोड़ी सी बात महत्वपूर्ण है, इसीलिए परम परम सत्य आकार ही है, फिलोसफिकल दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से भी समझना चाहिए। तो भगवान में सारे मुख्य गुण होने चाहिए और गौण गुण भी होने चाहिए, सभी गुणों के स्रोत वही है वो। मेक सेंस? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो भगवान के स्वभाव को नहीं समझ पाते।
ऐसी कोई वस्तु हमारे पास और भगवान के पास नहीं
है। यस, तो आई कहां से? पर आप ये कैसे कह सकते हैं, जन्मादि अस्य यतः, परम सत्य की क्या परिभाषा है कि जो सभी का स्रोत है। तो इस जगत में जब आप रूप देख रहे हो तो रूप का स्रोत कौन है? परम सत्य। तो परम सत्य के पास स्वयं ही रूप नहीं है, तो इस जगत में रूप कहां से आया? मेक सेंस? आप प्रभु बच्चे को थोड़ा सा, हरी बोल प्रभु, आज का श्लोक बहुत फिलोसफिकल है, बच्चे को आप माता जी के पास छोड़ के आइए, मैं दिक्कत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि उनका भक्ति भावना नहीं है इसलिए वे कभी भी नहीं समझ सकते। जैसे कोई व्यक्ति की दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो तो कभी भी सूर्य को नहीं समझ सकता, चाहे सूर्य तो हमेशा सामने उपलब्ध है, लेकिन सूर्य सामने होते हुए भी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो तो व्यक्ति समझ नहीं सकता। ठीक है, लोग मेरे असली स्वभाव को ना समझकर सोचते हैं कि मैंने एक भौतिक रूप को धारण किया है। वे सोचते हैं कि भौतिक रूप को धारण करने से मैं उनके इंद्रियों को दृश्य हूं, इसलिए ऐसा सोचते हैं। वे इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि आत्मा होते हुए आत्मा द्वारा ही प्रकाशित होने के कारण मैं इंद्रियों से इंद्रिय ग्राह्य नहीं हूं। ये समझिए, बड़ा सुंदर बात है। वो कहते हैं, इनका ये मत है कि भाई आत्मा को तो, आत्मा तो इंद्रिय अतीत है, हम भी अपने आप को नहीं देख पा रहे ना, अभी देख पा रहे हैं हम आत्मा हैं हम, लेकिन देख कहां पा रहे हैं अपने आप को, देख पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मैं एक सचेत व्यक्ति हूं, लेकिन देख हम अभी नहीं पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आत्मा का अनुभव तो जड़ इंद्रियों से नहीं किया जा सकता है। आप ये कह रहे हो, भक्त लोग कहते हैं कि भगवान पूर्ण आत्मा है, तो अब ये जो व्यक्ति दिख रहा है, मतलब भगवान कृष्ण, यह तो हमको अपनी इंद्रियों से दिख रहा है, इंद्रियों से दिख रहा है, इसका अर्थ है कि जरूर भौतिक होगा। क्या उनके लॉजिक को आप समझ पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जड़ इंद्रियों से केवल जड़ वस्तु को ही देखा जा सकता है, ये बात सत्य भी है, आध्यात्मिक वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। तो भगवान जब यहां पे आते हैं तो वो, उनका जो रूप है वह भी भौतिक है, क्योंकि मैं अपनी इंद्रियों से देख पा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? उनका उनका गलत लॉजिक समझ में आ रहा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान असीमित शक्ति से युक्त हैं। भगवान के पास, अब भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपने आप को पूरी तरह आध्यात्मिक रखते हुए भी भौतिक जगत में भौतिक जीवों के सामने जब वह चाहें उनकी इंद्रियों के गोचर हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी को आपने अगर याद हो, ऋषभ देव जी क्या बोलते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, ये जो मेरा शरीर है ये भौतिक, भौतिकतावादी लोगों के दुर्विभाव्य है। उनको समझ में नहीं आता है कि भगवान का गुण किस प्रकार का है। जब वे दिव्य स्वरूप को प्रकट करते हैं तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं किसकी इच्छा से? अपनी स्वयं की इच्छा से। जब वो लीला करने यहाँ पे आते हैं तो स्वयं ही अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाते हैं कि साक्षात भगवान है। इसके ऊपर हम चैतन्य महाप्रभु की लीला भी आपको सुनाएंगे, आज छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, किस प्रकार से शास्त्रज्ञ, न सिर्फ शास्त्रज्ञ, महान शास्त्रज्ञ, महान शास्त्र मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता था, वह भी महाप्रभु को देखकर समझ नहीं पाया। इसलिए भगवान को देखने की बजाय भगवान के बारे में जब हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं भक्तों के संग में, तब हम भगवान के बारे में सही से समझ सकते हैं। शास्त्र, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि एक फिलोसफर है जाकिर नायक, वह भी शास्त्र जानते हैं, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण भगवान है। ये भी आश्चर्य की बात है। बहुत सारे उदाहरण है, हम उनकी निंदा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रमाण है कि एक प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तो शास्त्र अपने से पढ़ने से समझ में नहीं आते, वो ज्ञान को प्रकाशित नहीं करते। ठीक है, तो ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आया? उनका लॉजिक में क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि भगवान यहाँ पे आकर के दिख रहे हैं और मेरी इंद्रियां जड़ हैं, इसलिए भगवान का रूप भी जड़ है। लेकिन इसी प्रकार से कुछ लोग कहेंगे हरे कृष्णा, ये है देखिए, हरे कृष्णा जो है ये पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक ध्वनि है। अब कहेंगे अरे मेरी जीभ तो जड़ है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूँ उस पॉइंट पे, लेकिन इसी इसी से संबंधित है। ये आपको जो जीव है वो दी किसने है? हम सभी लोगों को भगवान ने दी है। ये बात बहुत सुंदर, ये वेदस्तुति में बात आती है कि क्या भगवान इंद्रिय ग्राह्य है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियां वस्तुतः उन्होंने इंसानों को या स्पेशली इंसानों को दी हैं ताकि वो भगवान को ग्रहण कर सकें, नाम उच्चारण कर सकें, कथा सुन सकें। भगवान के संबंध में जो भी बात होती है वो भगवान से भिन्न होती है। ये जीव इसीलिए दी है कि भगवान के बारे में बोला जाए, भगवान का नाम जप किया जाए। तो जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो वो जो ध्वनि है वह भगवान से अभिन्न है। मेक सेंस? ये भले लग रहा को हरे कृष्णा ऐसा करके है, लेकिन वह आज पूरी तरह चिन्मय आध्यात्मिक ध्वनि है। उसका अनुभव हमको आगे और होगा जैसे जैसे भक्ति हमारी बढ़ती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादा स्वयं स्फुरतः। भगवान की जो दिव्य नाम रूप गुण है वो भौतिक इंद्रियों से नहीं समझे जाते हैं, लेकिन जब हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो भगवान स्वयं हमारी इंद्रियों को पकड़ लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीभ अगर हरे कृष्णा बोल रही है तो ये एक भौतिक शब्द है। जिस प्रकार से अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की कृपा से उनको उस समय देख पा रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि स्वरूप उनका जो है वह भौतिक है। अब इसमें एक और रहस्य है। रहस्य ये है कि जरासंध और शिशुपाल भी कृष्ण को देख रहे हैं कि नहीं, लेकिन कोई प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा, कोई प्रेम अनुभव नहीं हो रहा। जो धोबी था उसने भी भगवान को देखा, भगवान ने कपड़े मांगे थे ना, नहीं दिया, कोई प्रेम नहीं था। और युधिष्ठिर महाराज भीम इत्यादि देख रहे हैं तो उनको अनंत सुख की प्राप्ति हो रही है। तो अगर स्वरूप भौतिक होता तो सबको एक ही जैसा अनुभव होता कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी और व्यक्ति का जो स्वरूप है या रूप है जिस जगत में, वो भौतिक होता तो उसको देख कर सभी को एक ही प्रकार का अनुभव मिलता है कि नहीं? लेकिन भगवान का स्वरूप चिन्मय है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? भगवान का स्वरूप चिन्मय है, उसका रहस्य ये है कि जो भक्त है उसको उसका सुख अनुभव होता है। गोपियों को अनंत रूप से सुखी लग रहे थे, कंदर्प कोटि कमनीय लग रहे थे, क्योंकि हृदय में भक्ति थी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए भगवान का जो ये रूप है भले इंद्रिय ग्राह्य दिख रहा है, लेकिन ये पूरी तरह चिन्मय है। इसकी चिन्मयता का अनुभव उसी को होगा जिसके हृदय में भक्ति होगी। जितनी मात्रा में भक्ति होगी उतनी मात्रा में वो समझ पाएगा। ये बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए अब यह आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि भगवान जो है पहले निराकार थे और अब वो रूप में दिख रहे हैं तो उनका रूप भौतिक है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। Does it make sense? और एक और बात समझना चाहिए, अपराध का मतलब क्या है? जो वस्तु आध्यात्मिक है उसको भौतिक मानना और जो वस्तु भौतिक है उसको आध्यात्मिक मानना। तो भगवान का स्वरूप पूरी तरह से चिन्मय है, आध्यात्मिक है, उसको भौतिक मानना ही अपराध है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वे कहते हैं किसी राजा की भांति मैंने माता देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में सात्विक कर्मों द्वारा एक भौतिक शरीर के साथ जन्म लिया है। ऐसे कहने का कारण यह है कि क्योंकि वह वो मेरे परम स्वभाव जो कि शाश्वत और अतुलनीय है उसे नहीं जानते। ऐसा इसलिए कि उनके पास भक्तों के संग का अभाव है जो मेरे बारे में जानते हैं। समझ में आ रहा है? भक्तों को भक्ति करके भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव भी प्राप्त होता है, शास्त्र ज्ञान भी होता है, लेकिन क्योंकि वे भक्तों का संग नहीं करते हैं इसलिए और स्वतंत्र रूप से शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान शास्त्र के द्वारा भी उनको प्रकाशित नहीं करते। इसीलिए साधु गुरु वैष्णव क्या है? शास्त्र साधु गुरु वाक्या चित्ते कोरिया ऐक्य। ये नरोत्तमदास ठाकुर जी बोलते हैं, शास्त्र की बात हम समझ रहे हैं लेकिन क्या हमारी समझावट ठीक है? तो वह गुरु और वैष्णव के मार्गदर्शन में सुनते हैं तब हम समझ पाते। ठीक है, हाँ।
निराकारवादी होते लोग शास्त्र को सही मानते हैं?
शास्त्र सही मानते हैं लेकिन शास्त्र को सही नहीं समझ पाते, क्योंकि देखिए जैसे महाप्रभु बोलते हैं पढ़ो भागवत गीता वैष्णवेर स्थाने। तो भागवत समझना चाहते हो तो भक्त सीखो, अपने मन से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, तो दिखेगा ही नहीं उनको। अद्भुत बात है कि भक्ति हर जगह है और उनको भक्ति कहीं नहीं दिखती। वही उदाहरण उल्लू वाला, सूर्य हर जगह अपना प्रकाश दिखा रहा है और उल्लू को कहीं पे भी नहीं दिखाई पड़ता। अब ये बहुत सुंदर है, भाव सत्ता स्वभावा अभिप्राय चेष्टात्म जन्मसु क्रिया लीला पदार्थेषु विभूतु विभूति बुद्ध जंतुषु। भाव के अलग अलग अर्थ हैं, भगवान कह रहे हैं परम भावम जनांतो, और आप देखेंगे सारे काफी सारे अर्थ भगवान पे घटित होते हैं, कुछ अर्थ नहीं होंगे घटित, मतलब घटित समझते हैं मतलब भगवान पे लागू होंगे। देखिए आप जरा विचार कीजिए, भाव का अर्थ क्या है, सत्ता, यानी भगवान के अस्तित्व, परम अस्तित्व को नहीं समझ पाते। स्वभाव, भगवान के परम स्वभाव, उनकी भक्त वात्सल्यता, शरणागत वत्सलता, दिव्यता, वह समझ नहीं पाते। अभिप्राय, किस अभिप्राय, अभिप्राय समझते हैं किस उद्देश्य से भगवान इस जगत में आते हैं, क्यों वह लीला करते हैं, यह उनको समझ नहीं आता। चेष्टा, कितने सुंदर अर्थ है, आप देखिए एक एक शब्द का अर्थ आप ले लीजिए, सब पे भगवान पे घटित हो रहा है। चेष्टा करते क्या हुआ, भगवान क्यों, क्या क्या चेष्टा कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। जैसे कि भगवान महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए कितना उद्यत है, कितना प्रयासरत है, ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ राज्य चाहिए, लगता है कि नहीं, और लोग इस प्रकार का भगवान पे आरोप भी करते हैं, लेकिन वह चेष्टा भगवान की समझ में नहीं आती। भगवान का जन्म, जन्म तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है लोगों को, अगर भगवान के बारे में ना सुने। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो सोचते हैं सात्विक कर्मों के द्वारा सात्विक शरीर प्राप्त किया है, क्रिया समझ में आती है क्या, क्रिया भी समझ में नहीं आती। देखिए एक भाव अर्थ के आप अलग अलग अर्थ ले लेंगे तो उसे कम से कम 6-7 अर्थ बन जाएंगे, कि भगवान की परम क्रिया समझ में नहीं आती, परम अभिप्राय समझ में नहीं आता, परम चेष्टा समझ में नहीं आती, जन्म समझ में नहीं आता, लीला, लीला भी समझ में नहीं आती, पदार्थ भगवान पे घटित नहीं होगा, पदार्थ तो मैं नहीं समझ रहा कि पदार्थ उस पर घटित होगा, विभूति भगवान की शक्तियां समझ में नहीं आती, और बुद्धिमान व्यक्ति और जंतु यह भगवान पे नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भाव के इतने सारे अर्थ हैं, और इन सभी के दिव्य स्वभाव को जो लोग अल्पज्ञ हैं या अज्ञ कहना चाहिए, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वह नहीं समझ पाते। ठीक, एक अच्छी बात है, शास्त्र पढ़ने की बुद्धि तो है लेकिन भगवान को समझने की बुद्धि नहीं है। इसको एक बहुत सुंदर तरीके से समझिए, हमारे एक भक्त ने बहुत अच्छे तरह से बताया, बहुत अच्छी बात। वो बोले कि भाई केमिस्ट्री या इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं वो इंग्लिश में लिखी जाती हैं कि नहीं, आप एक ही बार में समझ जाओगे। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्हें, बात बोली, उन्हें कहा कि भाई केमिस्ट्री की किताब अंग्रेजी में लिखी जाती है, तो आप अंग्रेजी सीख गए हो तो आप केमिस्ट्री सीख जाओगे, समझ में आया कि नहीं आया। इतना सुंदर बात बोली कि भाई आप अगर अंग्रेजी जानते हो इसका अर्थ यह नहीं कि आप केमिस्ट्री किताब पढ़ने लग जाओगे, मान लो हाई फाई किताब है, पीएचडी किताब है, एमए की किताब है, तो आप सब कुछ समझ लोगे, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, केवल भाषा के ज्ञान से हम समझ नहीं सकते, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति अगर संस्कृत का ज्ञान रखता भी हो तो भी वह भगवान की बात को समझ नहीं पाएगा। समझ में आ गया, ये बात बोली जा रही, मेरी भक्ति से रहित रहने के कारण वे मेरे स्वभाव को उसके रूप गुण जन्म और कर्म के सहित नहीं समझ पाते जो माया से परे हैं। मैं समझता हूं अब आप लोग समझ गए होंगे, भाव शब्द को यही 5-6 तरह से समझाया गया है। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ और शाश्वत हूं, ये तो क्या था वो अनुत्तमम और उसकी व्याख्या कर रहे हैं, अनुत्तम और अव्ययम शब्द की, अपितु वह ऐसा सोचते हैं कि मेरा एक सामान्य भौतिक रूप है जो अशाश्वत है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं ना कि कृष्ण तो 5,000 साल पहले आए, वो भगवान कैसे हो गए, लेकिन उनको समझाना चाहिए कि सूर्य क्या कल आज सुबह उगा था, हम लोग बोलते भी सूर्य उग गया, सूर्य उगता है, सूर्य तो अभिव्यक्त होता है, सामने प्रकट हो रहा है, लेकिन एक सामान्य भाषा में बोलने के कारण हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई सूर्य जो है उग रहा है। इसी प्रकार से भगवान शाश्वत हैं और उनकी गुण भी शाश्वत हैं, उनको हम लोग आज सुबह भगवान श्री राम के बारे में क्या सुना था कि जो गुण आप अच्छा सोचते हो कि भाई वो उसकी पराकाष्ठा क्या है, वह भगवान श्री राम में प्राप्त होती दिखती है, वहां देख लेना चाहिए कि वो गुण वहां पे होना चाहिए। तो इस प्रकार के भगवान के गुणों को वह नहीं समझ पाते। भगवान का स्वरूप ज्ञान और आनंद घन है, घन का मतलब होता है घनीभूत, कंडेंस्ड। तो भगवान का जो स्वरूप है वो आनंदमय है और ज्ञानमय है। अब आप यही बताइए, हमने पढ़ा था ना नमो विज्ञान मात्राय, भगवान के चारों ओर ज्ञान का आवरण है, जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर तेज का आवरण है। अब अगर कोई कहे कि इस जगत में तो हमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा नहीं जिसके चारों ओर तेज हो, कोई देखे हैं आप किसी को कि रोशनी निकल रही है उससे, ऐसा देखा नहीं है, तो क्या सूर्य देव भी ऐसे नहीं हो सकते? जिसने सूर्य को देखा नहीं है वह तो यही सोचेगा, अरे हमने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा कोई व्यक्ति इसके शरीर से किरणें निकल रही हो। लेकिन सूर्य प्रत्यक्ष है, जिनके पास आंखें हैं उनके लिए सूर्य प्रत्यक्ष है, कहेंगे देखो सूर्य सामने है, क्योंकि हमें तो नहीं दिख रहा। ये बात है। तो उसी प्रकार से भगवान का स्वरूप ही आनंदमय है, लेकिन भक्ति न होने के कारण वे समझ नहीं पाते। विज्ञानम आनंदम ब्रह्मा, एक कोट कर रहे हैं, भगवान ज्ञान और आनंदमय है। बृहद अरण्यक उपनिषद से तो बड़ा स्पष्ट है, उनके अनेक गुण उनके रूप के ही समान है। समझ में आई बात? उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीला वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य मतलब विशिष्ट लीला, स्पेशल लीला, वह सब भगवान ही हैं। वे इसीलिए उनको अद्वैत तत्व कहते हैं। क्या तत्व कहते हैं? अद्वैत तत्व। जैसे हमने जो लीला करी है, लीला नहीं, जो हम कार्य करते हैं वे हमसे भिन्न है, हमारा नाम हमसे भिन्न है, लेकिन अगर हम भगवान की लीला सुन रहे हैं, भगवान के तत्व को सुन रहे हैं, भगवान के गुणों को सुन रहे हैं, तो हम भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। हम भी इस तरह अभी पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन यह लगता है कि अच्छा लग रहा है। इतना तो समझ में आता है कि हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम पैसे नहीं हमको दिए जा रहे हैं भगवान का गुणगान करने के लिए, तो इसीलिए हम उस कार्य को बिना पैसे लिए कर रहे हैं, मतलब हम उसको सुख की अनुभूति कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है उसका अनुभव हमको और अधिक अधिक हो जाता है। जैसे यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मा चक्षुरिथैवांज संप्रयुक्तम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से आंख में आप दवा डालते हो, आप कौन सी दवा बनाते हैं आप लोग? नेत्र बिंदु, नेत्र ज्योति। तो नेत्र ज्योति, मान लीजिए किसी की आंख थोड़ा नहीं दिख रही है, तो नेत्र ज्योति डालेंगे तो क्या तुरंत ही उसको दिखना चालू हो जाएगा? नहीं। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने, जिस प्रकार से जितनी मात्रा में जीव की शुद्धि हुई है, जितनी मात्रा में भक्ति के द्वारा मत पुण्य गाथा, पुण्य मतलब पवित्र करने वाली, अविद्या का निवर्तन करने वाली, इस ये भाषा समझ में आ रही है, अविद्या का नाश करने वाली। अब ये भाषा अगर मैं पहले दिन प्रवचन में करता जीएलए में तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन आप देखिए कि आप शुद्ध हुए हैं इसलिए आप समझ पा रहे हो, अपने अंदर देख लो आप। मैं यही मैं बीएमएस में भाषा यूज करता, विद्या निवर्तक और ये सब, तो आप कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन आप स्वयं अपने जीवन में देखिए आप समझ पा रहे हैं। समय तो भगवान की बात है कि जितनी मात्रा में मेरी श्रवण कीर्तन के द्वारा जीव शुद्ध होता है, परिमृज्य, परिमार्जन समझते हैं, सफाई करता है, सफाई हो जाता है चित्त का, उतनी मात्रा में वह क्या है, तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात, वह वस्तु यानी भगवान की सूक्ष्मता अर्थात मधुरता का अनुभव कर पाता है। कैसे? चक्षुरिथैवान जैसे संप्रयुक्तम, जैसे चक्षु में अगर दवा दी जाती है, चक्षु मतलब आंख, आंख में दवा दी जाती है तो धीरे धीरे आंख की रोशनी सामने आने लगती है। स्वयं भगवान कृष्ण का कथन है। जितनी मात्रा में हम भक्ति करते जाएंगे, जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी मात्रा में भगवान का तत्व हमको और अधिक समझ में आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, उनके अनेक गुण उनके रूप के ही समान है। तो ये बात तब हमें समझ में, अभी तो हम धारण करते हैं, धारण भी कर पा रहे हैं कि कुछ भक्ति है, नहीं तो हम स्वीकार भी नहीं करते, और फिर धीरे धीरे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी हम उसको और अधिक समझ पाएंगे। अनंत कल्याण गुणात्मक सौ, वे अनंत कल्याणमय गुणों से विभूषित हैं। अनंत का अर्थ बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो अर्थ ले लीजिए इसके। अनंत गुणों से विभूत, अनंत कल्याणमय गुणों से विभूषित है, मतलब एक की गुणों की कोई सीमा नहीं, दूसरा कि गुण कितना कल्याण कर सकते उसकी भी कोई सीमा नहीं। समझ में आ रही है? भगवान के जो गुण है वे अनंत है, तो समझ में आ रहा है। और एक और अर्थ मेरे में आ रहा है, दूसरा जितना जीव का कल्याण भगवान के गुण कर सकते उतना कोई कर नहीं सकता, कोई उसकी लिमिट नहीं है, एक। और तीसरा अर्थ ये है कि उन गुणों की भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब दया की बात करें तो उस दया कितनी है? अनंत। अगर सुंदरता की बात करें अनंत, शक्ति की बात करें अनंत, तो गुण नंबर मतलब संख्या की दृष्टि से अनंत, मात्रा की दृष्टि से अनंत, और जीवों का कल्याण करने की दृष्टि से भी अनंत। वो एक ही बात हो गई, मात्रा की शक्ति, ठीक, ये विष्णु पुराण में बता दें। उनका जन्म एक अभिव्यक्ति मात्र है, अभिव्यक्ति मतलब हमेशा भगवान रहते हैं, भगवान अपने को प्रकट कर देते हैं। एक होती है प्रकट लीला जो भगवान यहाँ पे करते हैं, और एक होता है अप्रकट लीला जो भगवान की हमेशा चलती रहती है। इस समय भी वृंदावन में भगवान की लीला चल रही है, हम देख नहीं पा रहे, तो जो शुद्ध भक्त है वह देख पाते हैं उसको। तो कभी कभी जैसे भगवान आप जानते हो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार इस ब्रह्मांड में अपनी प्रकट लीला करते हैं। प्रकट मतलब उनकी इच्छा से सामान्य लोग भी उसको देख पाते हैं, लेकिन उसकी मधुरता का अनुभव कौन कर पाता है? जो भगवान के भक्त। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये बात। अजोपि सन्न अव्यात्मा, यद्यपि मेरा जन्म होता है फिर भी मैं शाश्वत हूं। अजोपि मतलब मेरा जन्म कभी नहीं होता है लेकिन फिर भी मैं प्रकट होता हूं। भाई जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सूर्य उगता नहीं है, सूर्य केवल आप हमारे सामने अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त का अर्थ समझते हैं?
yes.
देखिए बात बहुत सिंपल लगती है लेकिन तभी समझ में आती है जब भक्त के मुख से सुनते हैं, भक्त संग सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हम भारतीय थे तो हमें कृष्ण के बारे में सब कुछ पता था, कुछ भी पता नहीं था ना। और भगवान के बारे में जानने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता। यद्यपि वे अव्यक्त हैं परंतु अपने उपासकों के प्रति करुणा के कारण वे उनके समक्ष अपने को व्यक्त करते हैं। अव्यक्त है मतलब प्रकृति के परे हैं, लेकिन भगवान अपने जो उनकी भक्ति करता है उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं। एक बहुत सुंदर बात पार्थ प्रभु बता रहे थे, इनने एक चंडीगढ़ के ब्रह्मचारी को पूछा कि प्रभु जी कभी आप, अब बताओ याद आ रहा है वो बात कि आप कभी मंगल आरती आधे घंटे में समाप्त कर देते हो, कभी आप 25 मिनट में कर देते हो। बहुत सुंदर बात है, बोलो 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 बोलो, बहुत अच्छी बात है। बोला प्रभु जी का नाम बताइएगा, क्या नाम था उनका?
तिलक नाम बोलते हैं, तिलक।
हाँ, क्या बोले, उनका उत्तर क्या था?
कह रहा है भाव मेरे को आ जाता है,
अब भूल गए। बहुत सुंदर बात उन्होंने बोले कि देखिए कह रहे थे पुजारी कि कभी कभी मुझे अनुभव होता है कि साक्षात भगवान वहां पे प्रकट है, तो इसलिए मैं आरती करता ही जाता हूँ, और कभी कभी समान रूप से आरती करता हूँ तो पूरा कर देता हूँ। तो आप देखिए कि भगवान तो हैं, भगवान कभी कभी अपने भक्त को प्रकट, अपने भक्त के सामने उसके हृदय में इस ज्ञान को प्रकट कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए ना, कभी कभी हम लोग को लगता है कि जब छोड़, मतलब हम छोड़े ही नहीं, सभी को कभी कभी भगवान प्रकार से अनुभव देते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कोई रुचि नहीं है इस प्रकार से। तो खैर जो भी है, भगवान जो है अपनी कृपा करके अपने भक्तों के समंग अपने ऐश्वर्य माधुर्य को प्रकट करते हैं। न शक्य स त्वया दृष्टम अस्माभिर वा बृहस्पते यस्य प्रसादम कुरुते सवय तम दृष्टम अर्हति। हे बृहस्पति, वे मेरे तथा आपके द्वारा देखे नहीं जा सकते, लेकिन वो व्यक्ति जिन्हें वे अपनी कृपा प्रदान करते हैं वो उन्हें देख सकता है। बहुत सुंदर बात, ऐसे उपनिषद की भी कहती है कि बहुत प्रवचन करने से, अब प्रवचन का अर्थ कौन सा हो गया, मनगढ़ंत प्रवचन करने से, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है। यहाँ पे हम लोग गए थे कुंभ मेला में, खूब जोर जोर से सन्यासी बोल रहे थे हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, लेकिन ये नहीं बता रहे वो सच्चिदानंद है कौन। तो इस प्रकार के व्याख्यान से भगवान प्रसन्न नहीं होते। प्रवचन भगवान के अनुसार होना चाहिए, परंपरा में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो कृपा करते हैं। समझ में आ रही है? और ये सारे प्रवचन इसीलिए किए जाने चाहिए ताकि भगवान प्रसन्न हो। अब हम यही आके बोलते रहे कि निराकार से साकार आया तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होने वाले। और बहुत बुद्धि के द्वारा भगवान को हम समझ सके ऐसा नहीं है। नायम आत्म प्रवचन न लभ्यो न बुद्धिया, ऐसे करके श्लोक आता है कि जिसको भगवान स्वयं प्रकट करना चाहते हैं वही भगवान को समझ सकता है। तो किसको समझ करना चाहते हैं? जो भगवान की भक्ति करता है। भक्त्या क्या है? भक्त्या मम ही जानाति। तो अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं क्योंकि जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला उसी बात को हम सामने रख रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रही बात? तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु।
तात्पर्य, देवताओं के उपासकों को अल्पज्ञ कहा गया है। भगवान कृष्ण अपने साकार रूप में यहाँ पर अर्जुन से बातें कर रहे हैं, किंतु तब भी निर्विशेषवादी अपने अज्ञान के कारण तर्क करते रहते हैं कि परमेश्वर का अनंत स्वरूप नहीं होता।
छोटी सी टीका चक्रवर्ती बात की, बहुत सुंदर समझ। कहते हैं भाई देवता के, देवता जो उपासक है वो तो अल्पज्ञ है, मान लिया भाई वो कर्म कांड भी पढ़े हैं, वो ज्ञान कांड नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो ज्ञान कांड पढ़ा हुआ है, उपनिषद वगैरह पढ़ा है, उसको तो ज्ञान होता है, तो वह क्यों नहीं आपकी भक्ति करता? तो यहाँ पे ही बात बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद जी सारे टीकाओं को अपने इस पॉइंट में लेते हैं, समझ रहे हैं लॉजिक। वो कह रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी है, शुष्क ज्ञानी जो खाली निर्विशेष की उपासना करता है, तो उसको तो ज्ञान है ना, तो वह आपकी उपासना क्यों नहीं करता, वह भक्ति क्यों नहीं करता? तो यही बोल रहे हैं कि वो तथाकथित निर्विशेष बात ज्ञान होने के बाद भी, सतगुण में स्थित रहने के बाद भी, वह ये नहीं समझ पाते कि भगवान एक व्यक्ति है कि नहीं।
यस
पढ़िए।
श्री रामानुजाचार्य की परंपरा के महान भगवत भक्त यामुनाचार्य ने इस संबंध में दो अत्यंत उपयुक्त श्लोक कहे हैं।
ये बहुत सुंदर है। एक भक्त ने मुझसे यही पूछा आज कि उन्हें कोई समझ में क्यों नहीं आता है, तो इस श्लोक को जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर। मेरे पीछे बोलिएगा, त्वाम शील रूप चरित है परमा प्रकृष्ट ही,
त्वाम शील रूप चरित है परमा प्रकृष्ट ही,
सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे,
सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे,
प्रख्यात देव परमार्थ विदामतैश्च,
प्रख्यात देव परमार्थ विदामतैश्च,
नैवासुर प्रकृत प्रभवन्ति बोद्धुम,
नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम।
फिर से बोलते हैं, बहुत श्लोक बहुत अच्छा है ना, पर फिर से बोलते हैं। देखिए बड़ा अर्थ सम्मिलित, आपके शील रूप चरित्र परम प्रकृष्ट हैं, बिल्कुल शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है, सारे शास्त्र में प्रबल रूप से वर्णन है, लेकिन आप प्रख्यात भी हैं देवता के रूप में, भगवान के रूप में, लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनकी बुद्धि में समझ में नहीं आता। फिर से श्लोक को बोलते हैं, त्वम त्वाम शील रूप चरित है परमा प्रकृष्टै,
त्वाम शील रूप चरित परम प्रकृष्टै,
सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै,
सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै,
प्रख्यात देव परमार्थ विदामतैश्च,
प्रख्यात देव परमार्थ विदामतैश्च,
नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम,
नैवासुरा प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम।
मन करना बार बार बोले, लेकिन हम प्रवचन आगे पढ़ना, पढ़िए। अब समझ में आ रहा है कि लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये समझ में आ रहा है क्योंकि असुर प्रकृति है। वही उदाहरण दे महाराज, बड़ा सब बोलते हैं कि एक बार बहुत अच्छा उदाहरण लगता है मेरे को। एक बार एक हंस एक बार हंस रात हो गई तो एक पेड़ में जाके बैठ गया, तो वहां पे उल्लुओं के समाज था। उल्लू बोले, तुम कौन हो? कहले, मैं हंस हूँ। अच्छा, हंस हो, क्यों आए यहाँ पे, क्या काम है तुम्हें? तो बोले, सूर्य अस्त हो रहा था, अस्त हो गया था, तो अब मैं उड़ान नहीं भर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पे विश्राम करने आ गया। सूर्य, सूर्य किस चिड़िया का नाम होता है? अब उल्लुओं को यही लग रहा है कि जगत में जो कुछ भी है वह केवल चिड़िया ही है। अब उसको क्या समझाए कि भाई सूर्य जो है, सूर्य कोई चिड़िया नहीं होता है। वो समझाने का प्रयास भी किया, अभी सूर्य उगता है, पूरे जगत पे रोशनी देता है, लेकिन उल्लू सब मजाक में, देखो आ गया पागल कहीं का, मूर्ख कहीं का, से कुछ पता नहीं है। इस प्रकार से लोग भक्तों को भावुक कहते हैं। भक्तों का भाव होता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें कोई तत्व ज्ञान नहीं होता। अभी तो ऐसे लोग जो भगवान को निराकार कहते हैं वो उन लोगों के तरह है, क्यों? यही बात यहाँ पे श्लोक से संबंधित है। जैसे सूर्य उदित होगा, उल्लू कौन से दिव्य गुण को प्रकाशित करेगा? पता है? उल्लू का एक दिव्य गुण है कि जैसे ही सूर्य उगेगा उसे दिखना बंद हो जाएगा। कितना अद्भुत बात है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता सूर्य के समान है, अगर आप पक्के नलायक ना हो तब तक आप गीता को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। एकदम स्पष्ट भगवान बोल रहे हैं, लेकिन महामूर्ख लोग जो उनका भगवान विश्वास नहीं है अपने मन से इस प्रकार की बातों को व्याख्या को करते हैं, जिससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। यही बात बोल रहे हैं कि आपका शील चरित्र गुण सब कुछ स्पष्ट है कि नहीं? भागवत के श्लोक में भगवान का महिमा नहीं वर्णन है, सभी में वर्णन है, लेकिन भागवत पढ़ने के बाद, गीता पढ़ने के बाद भी उनकी मति भगवान में नहीं लगती। तो ये क्यों कारण है उनका? कारण ये है असुर स्वभाव, भगवान से विरुद्ध हो रहने का प्रस्वभाव। यस, कुछ पूछ रहे थे आप, माइक पे बोलिए।
रोजी, आपके हिसाब से सेकंड लाइन मतलब बता दें, सत्वेना सत्विकतया प्रवेशस्थ,
क्या कह रहे हैं?
सेकंड लाइन का मतलब नहीं,
अभी अनुवाद पढ़ लेते हैं। Yes.
हे प्रभु, व्यास देव तथा नारद जैसे भक्त आपको भगवान रूप में जानते हैं। मनुष्य विभिन्न वैदिक ग्रंथों को पढ़कर आपके गुण रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान के रूप में समझ सकता
है। हाँ, तो यानी वैदिक ग्रंथों का महत्व नहीं हो ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वैदिक ग्रंथों का बहुत महत्व है। क्या है श्लोक? वो माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया से मुग्ध जीव है वह अपने आप भगवान को नहीं जान सकता है, इसलिए भगवान ने कृपा करके वेद पुराण की रचना करी है। लेकिन ये मूर्ख लोग वेद पुराण पढ़ के भी समझ नहीं पाते ये बात। यस,
किंतु जो लोग रजो तथा तमोगुण के वश में हैं, ऐसे असुर तथा अभक्त गण आपको नहीं समझ पाते। ऐसे अभक्त वेदांत उपनिषद तथा वैदिक ग्रंथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण क्यों ना हो, वे भगवान को समझ नहीं पाते।
नहीं पाते। तो एक बात समझना चाहिए कि आप कहेंगे हाँ, यानी कि सतोगुण की वृद्धि भी हो सकती है, खूब सतोगुण हो सकता है, खूब ध्यान कर सकते हैं, लेकिन भगवान का ध्यान उनके चरणों में नहीं, उनको नहीं आ पाएगा। बहुत सुंदर बात चैतन्य भागवत में है कि श्रीवास ठाकुर के घर में जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, तो वहां पे भी ये बात आती कि वह चरण कमल जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी प्राप्त नहीं है, उन चरण कमल या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को की साक्षात सेवा श्रीवास ठाकुर जी के घर का सेवक भी कर रहा। ये बात समझ में आ रही है आपको? साक्षात उनका, उनको जल दे रहे हैं, एक दुखी नाम की माता जी थी, वो जल लेके आ रही हैं, उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनके प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। महाप्रभु कहते भी हैं कि श्रीवास, तुम्हारे घर, तुम्हारे गांव का, घर का नहीं, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है, एकदम स्पष्ट चैतन्य भागवत में बोलते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे कि प्रभु, बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी कुछ फिलोसफर से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला भगवान कौन है, तो बोले हम भगवान के बारे में जानते हैं लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान कौन है। और फिर उन्होंने सरस्वती को, माता क्या नाम था उनका, यमुना माता जी नहीं, मालती माता जी की लड़की को पूछा भगवान कौन है, तो बोला कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। बड़ा प्रत्यक्ष, भगवान उनके लिए बिल्कुल भी अलभ्य नहीं है, अलभ्य मतलब अप्राप्य नहीं है, लेकिन भगवान के भक्त के शरणागत होगा तब, अन्यथा नहीं। क्या है, वेदेश दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्तो, वेद का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करेगा भगवान नहीं प्राप्त होने वाले, ये बहुत कठिन होगा, लेकिन जो आत्मभक्त है, जो उनके भक्त है, उनके लिए सुलभ है भगवान। समझ में आ रहा है बात? यस, पढ़िए।
ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि केवल वेदांत साहित्य के अध्ययन से भगवान को नहीं समझा जा सकता।
यही पढ़ी, मेरे वाणी से निकल ही गया, यही बात बोल रहे हैं ना, वेदेश दुर्लभम अधुर्लभम आत्मभक्त। यस,
परम पुरुष को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है।
इस पे हम लोग और व्याख्या करेंगे कि भगवान को केवल कृपा से ही जाना जा सकता है, कृपा कैसे प्राप्त करेंगे उसको भी हम वर्णन करेंगे। ये बस पॉइंट पकड़ लीजिएगा, उसको आगे हम चर्चा करेंगे।
अतः इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, अपितु वे अभक्त भी जो कृष्ण भावना मृत से रहित है, जो वेदांत तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते हैं, अल्पज्ञ हैं, और उनके लिए ईश्वर के साकार रूप को समझ पाना संभव नहीं है।
समझ में आ रहा है ना, जैसे एक वो प्रस्तुत करेंगे कि भाई भगवान का तो आत्मा स्वरूप है, तो उनके दिव्य शरीर, उनके शरीर से खून कैसे बह रहा है जब बाण लगते हैं, तो इसका कभी नहीं समझ सकते हैं। आचार्यगण बताते हैं कि जैसे जादूगर दिखाएगा, हमारे यहाँ मंदिर में एक जादूगर आया था, उसने एक लड़की के सर पे कुछ टोपी लगाई और टोपी में कुछ पेट्रोल डाला, फिर आग लगा दी, और वाकई आग लग रही थी। अब बताइए कि हमारी सीखा भी जला दी जाए, धुआं भी पकड़ ले, अगर हल्की सी आग पकड़ ले तो हम नाचेंगे, और वो लड़की नाच रही है, ऐसे खूब नाच रही है, उसके सर पे आग जल रही है, तो आपको क्या दिख रहा है, एकदम विरोधाभास लग रहा है ना, कि भाई आग लग रही है तो लड़की नाचेगी कैसे, दिख रहा है नहीं दिख रहा? आप मेरे खास सभी लोग थे जो लोग उस यहाँ पे हमारे कृष्ण हॉल में हुआ था, तो एक सामान्य जादूगर भी एक विरोधाभास की स्थिति प्रस्तुत कर सकता है ना, जिसका सर पे आग लगी हो, नाचेगा क्यों, डांस क्यों करेगा, मुस्कुराएगा क्यों? तो भगवान की अपनी लीला शक्ति के द्वारा सब प्रस्तुत नहीं कर सकते, वो आत्मस्वरूप है, उनको कोई भेद नहीं सकता, उनका शरीर चिन्मय है, लेकिन फिर भी वह अपनी लीला शक्ति के द्वारा ऐसा प्रस्तुत कर सकते कि उनके शरीर से खून निकल रहा है, ऐसे कर, क्यों? क्योंकि वह समय क्षत्रिय आवेश में है। ये अरे मान लीजिए वो बाण चलाते और बाण आर पार हो जाता, तो भीष्मदेव को भी कुछ अच्छा नहीं लगता और उनको भी कुछ अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए लीला का आवेश, लीला का आवेश में वो है, इनकी लीला शक्ति के द्वारा इस प्रकार संपादित होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि उनका रूप, उनका जो शरीर है वह भौतिक है। इसीलिए जैसे हम आज सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि दुर्गा जी को भी समझ में नहीं आया तो हमारे लिए तो और दुर्गम है, अगर भक्तों से नहीं सुनते, ठीक है? यस।
जो लोग परम सत्य को निर्विशेष करके मानते हैं वे अभुद्धया बताए गए हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो परम सत्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म से ही परम अनुभूति प्रारंभ होती है जो ऊपर उठती हुई अंतर्यामी परमात्मा तक जाती है, किंतु परम सत्य की अंतिम अवस्था भगवान है।
ब्रह्मेति वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दे। तत्व वही है, तत्व में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इसके अलग अलग सोपान है, लेवल समझते हैं, रियलाइजेशन का अलग अलग लेवल है, और उसको ब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है और भगवान कहा जाता है। मैं समझता हूँ इस बात को आप सब समझते हैं, उसको हम व्याख्या नहीं करेंगे। हाँ, एक एक उदाहरण से बता देता हूँ। जैसे कोई बहुत दूर से कोई पहाड़ दिखाई पड़ रहा है आपको, तो कैसा दिखाई पड़ता है? बादल जैसा हरा हरा दिखाई पड़ता है ऐसे करके। फिर जब और थोड़ा पास में जाते हैं तो आपको पेड़ भी दिखाई पड़ने लग जाते हैं। फिर और पास में जाते हैं तो आपको जीव जंतु भी दिखाई पड़ते हैं, तो उसी विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। शुरुआत में इतनी विविधता नहीं दिखाई पड़ती है, तो इसी तरह से ब्रह्म जो है भगवान का निराकार स्वरूप है, उसमें कोई विविधता नहीं दिखती। और आगे जो अनुभूति है वो परमात्मा की अनुभूति है। और जब हम देख जिसमें हम भगवान के आनंदमयता को नहीं समझ पाते, भगवान के दिव्य गुण है हम नहीं समझ पाते, भक्त वात्सल्यता को नहीं समझ पाते, लेकिन भगवान का जब अनुभूति होती है तो समझ पाते हैं किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। जैसे आज वो भरत महाराज वाली हम कहानी सुन रहे थे। भरत महाराज जब हम पूरी लीला नहीं बता रहे, लेकिन जब सुनते हैं तो धीरे धीरे समझ में आता है कि भगवान कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो बिना भक्तों के संग में सुने हुए भगवान का तत्व समझ में नहीं आता। यस,
आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पज्ञ हैं, क्योंकि वे पूर्वगामी शंकराचार्य का भी अनुसरण नहीं करते, जिन्होंने स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं।
हाँ, भगवत गीता की व्याख्या में शंकराचार्य जी कहते हैं नारायणो पर अव्यक्तात्, अव्यक्त के परे भी नारायण है। अव्यक्त मतलब इस जगत प्रकृति की वह अवस्था जिसमें कुछ भी सृष्टि नहीं होती है, अव्यक्त कहते हैं, उसके परे भी भगवान नारायण है, स्वयं शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, लेकिन वह इसको स्वीकार नहीं करते। यस, और उसकी कुछ व्याख्या करना चालू कर देते हैं उल्टा पुल्टा। यस,
अतः निर्विशेषवादी परम सत्य को ना जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वासुदेव के पुत्र हैं, या कि राजकुमार हैं, या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवद गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुम आश्रितः।
हाँ, तो निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन भगवान के शब्दों को हम दोहरा सकते हैं। समझ में आया? भगवान यहाँ पे कोई बड़े मीठे मीठे शब्द नहीं बोल रहे, कह रहे मूड है, तथाकथित रूप से बहुत ज्ञानी होगा, लेकिन महामूर्ख, क्या प्लीज समझिए, ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं होता है, केवल थ्योरी है। मैं एक बार अनपरा पावर स्टेशन में अपने मामा जी के यहाँ गया था, और वहां मैं प्रवचन कर रहा था, पंडित जी बैठे हुए थे, कह रहे नहीं नहीं कृष्ण से परे भी कुछ है, कृष्ण भगवान है लेकिन उससे परे भी कुछ है, या गीता के परे भी कुछ है, इस प्रकार की बातें बोलते हैं, तथाकथित रूप से ब्राह्मण थे। तब मैंने उनको बोला कि मतलब उनको बोला मतलब बाद में मामा जी को बोला था, इसका अर्थ है कि उन्होंने गीता कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इसको जानने के बाद, नहीं बोल रहे ना सातवें अध्याय में, इस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। तो किस आधार पर आप कह रहे हो कि गीता के परे कुछ ज्ञान है? हाँ, ये बात सत्य है कि गीता के जो तथ्य हैं, या जो जो हम तत्व सीख रहे हैं, सिद्धांत सीख रहे हैं, उसका विस्तार हम भागवत में सीखते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो सिद्धांत हम भगवद गीता में सीख रहे हैं, आप देखो कि जब भगवद गीता ठीक से समझ लेते हैं तो भागवत में बड़ी आसानी से समझ में आती है, कि जो सिद्धांत हम भगवद गीता में सीखे हैं वह हम भागवत में होते हुए देखते हैं। सिद्धांत में ऐसा नहीं कि भागवत कुछ नया सिद्धांत दे रही, सिद्धांत वही है जो गीता का सिद्धांत। समझ में आ रहा? ऐसा बोलते हैं भगवान अहम सर्वस्व प्रभो, सभी का स्रोत मैं हूं, भागवत क्या बोलती है जन्मादिस्य यतः, तो सिद्धांत में परिवर्तन आया? सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इसीलिए कोई बोला अगर गीता है तो भागवत की क्या जरूरत है? अरे तो भगवान की कीर्ति तो बोली ही जा सकती है, विस्तार किया जा सकता है, तो इसलिए वह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से शास्त्र पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते। यस,
तथ्य तो ये है कि कोई बिना भक्ति के तथा कृष्ण भावनामृत विकसित किए बिना कृष्ण को नहीं समझ सकता, इसकी पुष्टि भागवत में हुई है।
इसको जरा बोला जाए, अथापि ते देव पदाम्बुज
अथापि ते देव पदाम्बुज द्वया
प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि
प्रसाद लेशानुगृहता एव हि
जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन् वन
न जान एको अपि चिरन विचिन्वन।
एक और तरह से गाते हैं इसको। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय
अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय
प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि
प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि
जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्
अचान्य एको अपि चिरं विरजन्वान्।
ये ट्यून मैंने सचिनंदन महाराज से एक बार फिर से गाते हैं, बहुत सुंदर श्लोक। अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय
अथापि ते देव पदाम्बुज द्वय
प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि
प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि
जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो
न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्
अचान्य एको अपि चिरं विचिन्वन्।
तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण को अपनी प्रार्थना में, ब्रह्मस्तुति कहा जाता है, बड़ी प्रसिद्ध स्तुतियां हैं भगवान ब्रह्मा जी की। तो कह रहे हैं अथापि, इसलिए भगवान, ते देव, ते मतलब आपकी, देव मतलब क्रीड़ा प्राणायन, जिस प्रकार से सुंदर सुंदर लीलाओं में निमग्न है या नियोजित है, पदाम्बुज द्वय, आपकी जो दो युगल चरण है, युगल मतलब समझते हैं, दो नहीं करना, आपके जो युगल चरण है, युगल मतलब ही दो होता है, आपके जो युगल चरण है उनका प्रसाद लेश, आपने सुना है लेश मात्र भी बुद्धि नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, थोड़ी सी भी नहीं है। तो प्रसाद लेश का अर्थ क्या हुआ, थोड़ा सा भी प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा अगर उसे प्राप्त, अनुग्रहित, अगर कोई व्यक्ति अनुग्रहित हो जाता है, अनुग्रहित बड़ा अच्छा शब्द है, अनुग्रहित का मतलब होता है अनुग्रह जिसको प्राप्त है, कृपा। तो जिस व्यक्ति को भगवान की प्रसाद कृपा से, जो व्यक्ति भगवान की कृपा से अनुग्रहित है, एव ही, एव मतलब वो ही, अर्थात और कोई नहीं, एव मतलब, एव ही का मतलब है कि जो, हाँ निश्चित, निश्चित ही तो है, एव मतलब केवल, यहाँ पे केवल वो व्यक्ति जिसने आपकी भक्ति करके आपका कुछ कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, प्रसाद मतलब कृपा, भगवान का अनुग्रह। जानाति तत्वम भगवान महिमनो, वह आपके तत्व को समझ, आपकी महिमा को तत्व में समझ पाता है। ना च अन्य, और अन्य कोई नहीं, एकोपि चिरन विचनवन, एक वही समझ पाता है, और लोग कितना भी विचार करते रहें, रूम पे बैठे बैठे वह भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। एक छोटा सा मैं साइड पॉइंट बोलता हूं, बड़ा गंभीर है, बौद्ध धर्म में वे अपने को शून्य क्यों करना चाहते हैं, तो पता है ये बात, बड़ी अद्भुत बात है। बौद्ध धर्म में उनका जीवन का लक्ष्य ये है कि हमको शून्य कर ले, क्यों, क्योंकि उनकी धारणा ये है कि ये जगत दुखमय है, और ये दुखमय जगत किसने बनाया, वो बोलते नहीं है भगवान ने, लेकिन किसी ने तो बनाया है, और वो व्यक्ति बहुत क्रूर है क्योंकि जगत बहुत दुखमय बनाया और आपको यहां डाल दिया। तो बचने का तरीका यही है कि आप सुसाइड कर लो, सुसाइड का मतलब अपने अस्तित्व को नष्ट कर लो, इसीलिए उन्हें शून्य में प्रवेश कर जाओ तो दुख से बच जाओगे। तब देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, और उनके गुणों को अपना विचार, कुछ कुछ सोच रहे हैं, बिल्कुल विपरीत गुण प्रस्तुत हो रहा है भगवान, है कि नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि बहुत विचार करने के बाद भी वह नहीं समझ पाते। चिरन मतलब समझते हैं, चिर मतलब बहुत लंबे समय तक, ऐसे ब्रह्म संहिता में आता है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मुनयो मुनिपुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपदन्य विचिंत तत्वे गोविंद मादि पुरुषम तमहम बजामि। वायु की गति से, मन की गति से मुनि दौड़ रहे हैं, चलते जाए अपने मन को भगाते रहे, फिर भी आपके तत्व को बिल्कुल नहीं समझ सकते क्योंकि वो अचिंत है, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो कब समझ पाएंगे? जब भगवान की कृपा होगी। और कृपा कब मिलेगी? भक्ति कर्म के द्वारा। पढ़िए अनुवाद, इसको मैं कई टीकाएं इस पे हैं, उसमें चर्चा करेंगे।
हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते।
हाँ, इसका उदाहरण भी है तपन मिश्र का। तपन मिश्र जब बांग्लादेश में थे और महाप्रभु से मिलते हैं तो उससे पहले बहुत शास्त्र पढ़े लेकिन उनको साधन साध्य समझ में नहीं आ रहा था। फिर महाप्रभु कहे आप हरे कृष्ण मत जपो, आप वहां जाओ, क्या था, कहां से आप, वाराणसी, वाराणसी जाइए। और पता नहीं क्यों भेजा भगवान ने, जो भी कारण रहा हो, लेकिन तपन मिश्र का आप भगवान का नाम जप करो तो आपको समझ में आएगा जीवन का उद्देश्य क्या है। अब हम इससे पहले कि चलिए एक लाइन पढ़ लीजिए, फिर नहीं, पहले इसके हम टीका कर पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो जीव गोस्वामी पाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्रम संदर्भ की टीका में इसी श्लोक पे वो कहते हैं कि भगवान आपकी महानता असीमित है, अनंत है, फिर भी, यानी कि असीमित है उसको समझना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपकी कृपा से एक विवेकी पुरुष जिसके पास विवेक है, मैं अपनी शक्ति से नहीं समझ सकता, बुद्धि है, इतनी बुद्धि है, आपके चरणों की प्राप्ति कर सकता है। समझ में आया? भगवान असीमित है लेकिन समझना चाहिए कि कोई कहे कि मैं तो छोटा हूं, जीव बहुत छोटा है, तो असीमित को कैसे समझेगा? असीमित की कृपा से। समझ में आ रहा है? उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे चरण क्या है, चरण द्वय है ना, क्या शब्द है, पदाम्बुज द्वय, पद अम्बुज, चरण कमलों का वर्णन करने का अर्थ है कि वह आपके चरण कमलों की शरण ले रहा है, अर्थात वह आपका भक्त है। और दूसरा बात कह रहे हैं बहुत सुंदर, यद्यपि कृपा लेश मात्र होती है, बहुत सुंदर टीका है, लेकिन क्रमशः ये बढ़कर पूर्ण हो जाती है। भगवान थोड़ी कृपा करते हैं, बहुत सुंदर ने बहुत अच्छी बात बोली कि बहुत थोड़ी सी कृपा करते हैं, पहले थोड़ी कृपा करते हैं, जैसे हम लोग पे भी कृपा करिए तो इतना समझ में आ गया कि गीता सही है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? कृष्ण भगवान है, भगवान कृपा कर रहे हैं तभी तो समझ में आ रहा है, अब भगवान के बारे में पूरा तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं क्रमशः यह कृपा बढ़ती जाती है, चैतन्य महाप्रभु भगवान है इस श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या भगवान की कृपा नहीं है? नाम जप कर रहे हैं कि भगवान की कृपा नहीं है? सब कृपा है, भक्तों का संग मिल रहा है, कृपा है। तो कह रहे हैं कृपा लेश मात्र होती है, थोड़ा सा, देखिए बहुत सारे अर्थ है, वो एक अर्थ ले रहे हैं कि लेश मात्र शुरुआत में होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे भगवान की कृपा और अधिक होती चली जाती है। अब वो महिमा शब्द को समझाते हैं, महिमा का अर्थ क्या है? कहते हैं महिमा का अर्थ है कि वह आपके माधुर्य और ऐश्वर्य की महात्म्य को समझ सकता है, कितने मधुर हैं। मैंने आपको बताया था ना भगवान कितने मधुर हैं, कंदर्प कोटि कमनिया। अभी तो हम स्वीकार करते हैं लेकिन इसका अनुभव भी होगा जब हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो जाते हैं, हम लोग मंगल आरती में उठने के लिए बेहोश अनुभव करते हैं अपने आप, है कि नहीं? होश खुलता नहीं है, चार बजे कि नहीं, मुझे तो लग रहा है प्रभु जी आज गलत आ गए, पहले ही आ गए। विश्वास नहीं होता है कि अभी अभी चार नहीं बजा है, अभी तो 3:55 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सोचते। तो भगवान के ऐश्वर्य को किस प्रकार से भगवान पूरे अनंत जन्म अनंत जगत के सोर्स है, वो सबके महात्म्य को समझ पाता है जैसे जैसे कृपा पूर्ण होती जाती है। बहुत सुंदर वह बोलते, बहुत सुंदर। उसके बाद वो कहते हैं कृपा का मतलब क्या है? कहते हैं कृपा है तो उससे हृदय में दिव्य ज्ञान उदित होगा। क्या है फल कृपा का? दिव्य ज्ञान। मैं भगवान का दास हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी, शाश्वत दास हूं। और दिव्य ज्ञान का फल क्या है? भगवान की उपासना करे, भगवान की सेवा करे। और उपासना का फल क्या है? भगवान का साक्षात्कार होगा। सुंदर बात उन्हें बोली, अब पता नहीं आपको सुंदर लग रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत सुंदर लगा। कृपा होगी तो दिव्य ज्ञान होगा, जैसे आप देख सकते हैं जिन लोगों की बुद्धि बिल्कुल मूर्ख बंद थी, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो कृपा हुई है मतलब आप भगवान की उपासना करोगे, सॉरी दिव्य ज्ञान होगा, समझ में आएगा दिव्य ज्ञान। और दिव्य ज्ञान का फल क्या है? आप भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, हमको समझ में आ गया कृष्ण के दास है, अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, फिर आप भगवान की भक्ति करेंगे। और भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो क्या फल प्राप्त होगा? भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र चैत, भक्ति से बहुत परेशानी होती है? नहीं, पर ईश अनुभव प्राप्त होता है, भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। उसके बाद कहते हैं बहुत शीघ्र होता है, इस प्रकार से प्रार्थना करें। सनातन गोस्वामी प्रात की कुछ टीका से हम ले रहे हैं, वह कहते हैं कि भक्त जो है वह भक्ति शुरू करता है और हर प्रकार के मनोधर्म को त्याग देता है। मनोधर्म मतलब अब मन मन की जो धारणाएं हैं भगवान के संबंध में वो सब छोड़ा है, वो उस पर हम विश्वास नहीं करते। उसके बाद वह भक्ति के लिए सदा प्रार्थना करता है कि नहीं? सच्चा भक्त यही करता है ना, भगवान आपके चरणों में प्रेम मुझको प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार से वे आपकी भक्ति की महिमा को समझ पाता है। देखो कितने सुंदर सुंदर अर्थ लेते हैं, महिमा मतलब आपकी भक्ति कितनी महान है, उसकी महिमा को समझ पाता है और अपने और उसके सच्चे स्वरूप को समझ पाता है। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों के संग के बिना गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु मतलब वैष्णव के मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करता और अपने तरीके से शास्त्र पढ़ता है और कितना भी योगाभ्यास करे, वह भगवान को नहीं समझ सकता। महाराज बार बता रहे थे कि भाई ध्यान करो ध्यान करो, जिसने भगवान के बारे में स्वरूप के बारे में कुछ सीखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, गुफा में बैठ के ध्यान करता रहेगा, वो क्या भगवान के बारे में समझ पाए? समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से वह वर्णन करते हैं। तो ये दो टीका मैंने लिया था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये बात हम देख रहे हैं कि भगवान की कृपा के प्राप्त किए बिना व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता है। यस,
एक प्रश्न है, ये जो रंचमात कृपा है ये हम कैसे आकर्षित करें भगवान?
श्रवण कीर्तन के द्वारा। ऐसे सनातन गोस्वामी आत्महत्या करना चाह रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो महाप्रभु ने कहा कि अरे मरने से भगवान प्राप्त होते तो फिर मैं एक क्षण में 100,000 शरीर त्याग देता, लेकिन श्रवण कीर्तन करने से बड़ी जल्दी कृष्ण प्राप्त होते हैं। क्या कुंती महारानी क्या कहती है वो श्लोक बताओ, बहुत सुंदर श्लोक है वो। शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। वही पदाम्बुज यहाँ पे भी आ गया, जो भगवान के बारे में सुनते हैं, शुण्वन्ति गाते हैं, गायन्ति शुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति, कोई नहीं होता है तो खुद ही गुनगुनाते रहते हैं, श्रुणवंति गायन्ति गृणन्ति अभिष्णशः। अभिष्णशः का मतलब लगातार बारंबार। और उसके बाद क्या है? नंदन्ति, बड़े प्रसन्न होते हैं जब कोई दूसरा गुणगान करता है। उसके बाद क्या था? स्मरन्ति, उसका स्मरण करते हैं। तो ये पांच चीजें करता है तो तवेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्, ऐसा व्यक्ति ही बहुत जल्दी भगवान के चरण कमलों को देखेगा। चरण कमलों को देखेगा मतलब चरण कमलों को देखने के बाद जो सुख होता है उसका अनुभव करेगा। वही वाली बात, धोबी ने भगवान को देखा, जरासंध ने भगवान को देखा, लेकिन भक्ति नहीं किए थे, भक्ति जागृत नहीं किए थे, तो कोई प्रेम नहीं था। भगवान स्वयं इस बात को भागवत में बोलते हैं, न तथा सन्निकर्षेणा, गोपियों को भी बोले और ब्राह्मण पत्नियों को भी बोले, मेरा स्मरण करके, मेरी कथाओं को सुन करके, मेरे विग्रह की सेवा करके और मेरा नाम कीर्तन करके मुझ में प्रेम होता है, मेरे साथ रहने से प्रेम नहीं होता। ये भगवान स्पष्ट रूप से बोले थे। यस प्रभु।
प्रभु जी का प्रश्न था कि रंश मात्र कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपने बोला कि
भक्ति करना चाहिए। जब भगवान की भक्ति करते, भगवान बोल रहे हैं ना कि देखो, ऐसे समझिए आप, भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना हम भगवान को नहीं समझ सकते, ये तो सीधी बात समझ में आ रही है। भगवान की कृपा के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं। और भगवान कहते हैं भक्त्या मम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मुझको समझ सकते हैं, दोनों वाक्यों को जोड़ दीजिए, भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकते हैं, भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं समझ सकते, दोनों वाक्य को जोड़ के क्या समझ में आया? भक्ति करेंगे तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है। क्या कठिन है? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। भक्ति यही श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, भक्ति का अर्थ समझते ही अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, भगवान को अनुकूल, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना, ये कृपा प्राप्त करने का तरीका। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण के लिए भजन कर रहा हूं और कृष्ण का भजन कर रहा हूं। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा फॉर्मूला है, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना। बहुत अच्छा है, फिर से याद किया जाए, कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन कर। बहुत अन्याभिलाषा शून्यम को थोड़ा अलग तरह से बताया गया है, ठीक है।
हाँ, कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है।
अब वैदिक साहित्य की व्याख्या के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता तो हम यह व्याख्या क्यों कर रहे हैं?
परंपरा में,
हाँ, परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे कि भगवान ने स्वयं बोला एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः। तो परंपरा में प्राप्त किया मतलब गुरु ने बोला है तभी तो शिष्य समझा है। तो आप ये मत समझे कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्याख्या मनगणंत नहीं होनी चाहिए, ठीक, मनगणंत जो मन से गढ़ ली गई हो। यस,
भक्ति के द्वारा की गई, की भक्ति के द्वारा की
नहीं होना चाहिए, ही होना चाहिए,
भक्ति के द्वारा ही उन्हें समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
इस महानतम जप से प्रारंभ करके कृष्ण भावनामृत में पूर्णता तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान को समझ सकता है।
बहुत सुंदर बात चैतन्य चरितामृत में है कि जब तक जीव भगवान की चिद शक्ति के संपर्क में नहीं आता वह भगवान को कभी नहीं समझ सकता। और आप देखिए हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भागवत गीता के द्वारा जब सुनते हैं परंपरा में, तो हम भगवान की शक्ति के संपर्क में आते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान को समझ पाते, ठीक, ये बातें बोल रहे हैं। आपने सुना ही ना, भगवान के नाम में अपने भगवान ने सारी शक्तियां दी हैं, तो स्वरूप शक्ति के संपर्क में आ रहा है, इस कारण से धीरे धीरे भगवान को समझ पाता है। ये मैंने फिर से रिपीट करूंगा, वेद इस बात को कहता है बार बार भगवान आपका नाम जप करने से, क्योंकि आपका नाम स्वयं प्रकाशमय है, स्वप्रकाशित है, इस कारण से हम आपको समझने में समर्थ हो जाएंगे, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे। अरे ये बताओ, मन कितने लोगों को लगता है? सब लोग जप कर रहे हैं, जीभ से जप कर रहे हैं, मन कितने लोगों को लगता है? तो मन की अपेक्षा ना करें, प्रयास करें सुनने का। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ध्यान पूर्वक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ईमानदारी से बोलो, मन लगता है? लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मन आपका उधर धावित हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि हम बार बार जप कर रहे हैं जीव से, तो अविद्या का नाश हो रहा है, हम भगवान के बारे में समझ पा रहे हैं शास्त्र से, है कि नहीं? ये तो हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? यस।
अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया,
सभी माया है। और ये तो भावुक भक्त हैं जो इस प्रकार से उनकी पूजा कर रहे हैं।
ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं, ये परम सत्य को नहीं जानते। 20वें श्लोक में स्पष्ट है, कामस्तैस्ते रहित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग कामेच्छाओं से अंधे हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं जिनके अपने अपने लोक हैं और भगवान का भी अपना लोक है।
बहुत सुंदर, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का लोक इतना सत्य है जितना कि सूर्य और चंद्रमा जो आपको दिख रहा है। पढ़िए,
जैसा कि 23वें श्लोक में कहा गया है, देवान देव जयो यान्ति,
देवान देव जयो, गलत लिखा है, देवान देव यजो यान्ति मदभक्ता यान्ति मामपि।
देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्ण लोक को जाते हैं, किंतु जो भी मूर्ख
किंतु तो भी
मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं और ये विभिन्न रूप उन पर ऊपर से थोपे गए हैं।
ये बात समझ में आ रही है? वो क्यों बोलते हैं, जरा विचार कीजिए, वो क्यों बोलते हैं कि किसी भी पथ को स्वीकार करो वहीं पहुंच जाओगे? क्योंकि वह सोचते हैं कि निर्विकार ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है और वह विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हुआ है, तो उनका वहीं पहुंचने का मतलब है तुम निर्विशेष ब्रह्म में पहुंचना है, समझ रहे हैं? वह निर्विशेष ब्रह्म को समुद्र की तरह मानते हैं, जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, ऐसा वो उदाहरण देते हैं। और निर्विशेष ब्रह्म से सारे रूप आए हैं, कृष्ण का, शिव जी का, हम सुनना भी नहीं चाहते लेकिन मन खाली बोल रहे हैं उनकी बात, दुर्गा जी का। वस्तुतः उनकी भक्ति किसी के प्रति नहीं है, वो सोचते हैं इन रूपों की पूजा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं निर्विशेष की ध्यान अभी नहीं कर सकता। वह विष्णु की उपासना करते हुए भी देखे जा सकते हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन उनका विष्णु पे विश्वास नहीं, वे ये नहीं समझ रहे हैं कि विष्णु, समझ पाते कि विष्णु का जो स्वरूप है वह शाश्वत है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? कहते हैं अभी पूजा कर रहा हूं, बाद में मैं ही विष्णु बन जाऊंगा। एक इंटरेस्टिंग चीज हमने पढ़ा था, रोचक बात थी, जैव धर्म में एक व्यक्ति शक्ति का उपासक है, दुर्गा जी का। तो वो एक वैष्णव से, एक वैष्णव है उनसे वो मतलब बहस कर रहा था, शास्त्रार्थ कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वैष्णव से पूछते हैं कि ये शक्ति किसकी है, तो बोले परम सत्य की। तो आप कौन है? मैं भी परम सत्य हूं। वो मतलब जो शक्ति को उपासक, तो कहते हैं अभी आप शक्ति की उपासना किस भाव में कर रहे हो? कहते हैं माँ के रूप में। तो उन्होंने बोला कि अभी आप माँ के रूप में उपासना कर रहे हो, और जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो वो आपकी पत्नी बन जाएंगे, क्योंकि आपकी शक्ति है। तो ये कैसी उपासना हुई? आप ही मान रहे हो कि मैं परम सत्य परमेश्वर बन जाऊंगा, तो तब वह शक्ति आपकी पत्नी बन जाएंगी, तो ये कैसी उपासना है? अभी आप माँ के भाव में सेवा कर रहे हो, उसके बाद आपकी पत्नी बन जाएंगी? वो चुप हो जाते, कुछ उत्तर नहीं दे पाता। तो ये देखेंगे कि तत्व को सुनना, भगवान की ज्ञान को सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो भ्रमित होने की बहुत संभावना है। ये फिक्सेडनेस समझते हैं, एकदम निष्ठा तभी आती है जब भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में सुनते हैं, तब भगवान की बातें धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती। नहीं तो पता नहीं क्या क्या बातें समाज में फैली हुई। यस,
क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि ना तो देवतागण ना ही कृष्ण निर्विशेष हैं, वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने अपने लोक हैं। अतः यह अद्वैतवादी तर्क की परम सत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से थोपा आरोपित हुआ है, सत्य नहीं उतरता।
ये बातें समझ में आ रही है ना आपको? ये किसी को नहीं समझ में आ रही है? क्लास पूरी करने के लिए हाँ मत बोल देना कि भाई जल्दी क्लास समाप्त हो जाए। हाँ बोलो, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। निराकार निर्विशेष ब्रह्म से रूप नहीं आ सकता, ठीक है? और ऐसा कोई वर्णन भी शास्त्र में नहीं है, कहीं वर्णन नहीं कि कृष्ण निर्विशेष ब्रह्म से आए हों, कहीं पे भी नहीं ऐसा। हाँ, वेद में क्यों होगा? कहीं वर्णन ऐसा नहीं है कि कृष्ण के स्रोत वो ब्रह्म ज्योति है, कभी नहीं ऐसा है। यस, जैसे एक सोचो कि ट्रेन की आप दूर से देखते हो तो ट्रेन की रोशनी दिखाई पड़ती है, उसके बाद ट्रेन दिखाई पड़ती है, तो उस रोशनी से ट्रेन आई है या ट्रेन से रोशनी आई है, क्या बोलेंगे आप? स्वाभाविक है, ट्रेन से रोशनी आई है, रोशनी से ट्रेन थोड़ा आई है। हाँ प्रभु, थोड़ा माइक दूर रखिएगा।
लेकिन वो मायावादी जबरदस्ती कहते हैं हाँ यही हो, यही सत्य है, तो उसका
इसीलिए हमको पूछना चाहिए कि कहाँ वेद में लिखा है इस प्रकार से कि भगवान जो है, भगवान कृष्ण का स्वरूप जो है वह निर्विशेष ब्रह्म से आया? कहीं नहीं, गीता भागवत से तो नहीं आना, कहीं भी इस प्रकार से वर्णन नहीं। आपको याद है ना, महाराज बता रहे थे कि व्यक्ति उनसे भगवान महाराज प्रवचन किए और बोले ये जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं वो मूर्ख है। अगले दिन 25 लोग आ गए, कहने लगे हम सबसे शास्त्रार्थ करेंगे। तो कह लेंगे महाराज कह रहे थे मेरे को दुख दुख हो रहा था कि क्या बोलना है, क्या कि कौन सा शास्त्र बोल देंगे, पता नहीं शास्त्र पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा हो। तो महाराज बोले फिर कौन से शास्त्र से आप पढ़ेंगे, बोलेंगे शास्त्रार्थ कौन से शास्त्र से करना चाहते हैं? तो आपस में बात, फिर कौन सा करना है, कौन सा वस्तुतः ऐसे लोग आजकल कोई पढ़े लिखे भी नहीं होते शास्त्र। तो बोले चलो गीता से करेंगे, गीता से बात करेंगे, गीता से बात करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला कि सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वता शिशिरो मुखम, ऐसे करके मतलब उनके सब जगह हाथ में। तो महाराज बोले, महाराज कहते मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, गीता तो हमारे हमारे साइड में आ गया, हमारे अखाड़े में आ गया। फिर महाराज बोले अरे तो ये श्लोक में तो लिखा है कि उसके बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे उनके सब जगह हाथ हैं, सब जगह उनके पाँव हैं, तो इसमें ये कहाँ निर्विशेष की बात आई? तो बोलो फिर चुप हो गए। तो अब देखिए कि श्लोक देखने के बाद भी जब तक महाराज से सुना नहीं, कुछ अलग ही धारणा हो रही थी। ये बात बहुत, अब अगर हमारे पास समय रहा चैतन्य चरितामृत में हम उसको लेंगे, अद्भुत बात है कि एक ब्राह्मण भगवान स्वयं कर रहे हैं, एक तेजस्वी ब्राह्मण कुछ भी बोलेगा उसको लोग मान लेते। तो इसीलिए वैष्णव से सुनना चाहिए, वो ब्राह्मण अगर भगवान का भक्त नहीं है तो उसे सुनने से कोई लाभ नहीं। भक्त है तो अच्छी बात है, फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। पढ़िए, कौन पढ़ रहे थे?
यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद गीता से हम स्पष्टतया समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा परमेश्वर का स्वरूप साथ साथ विद्यमान है और भगवान कृष्ण सच्चिदानंद रूप हैं। वेद भी पुष्टि करते हैं कि परम सत्य आनंदमय अभ्यासात, अर्थात वे स्वभाव से ही आनंद में है और वे अनंत शुभ गुणों के आगार
है। ये हमने टीका में पढ़ लिया था ना।
यस,
गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे अजन्मा है तो भी वे प्रकट होते हैं।
एक बार मैं गीता का प्रवचन मंदिर में कर रहा था, एक कोई माता जी ब्रह्म कुमारी की थी लग रहा है, वो एकदम झगड़ा करने लगी, अरे भगवान तो अजन्मा है तो कैसे प्रकट होंगे। तब मैं समझ रहा था कि क्या बात है, बिल्कुल प्रसाद लेशानुग्रहित एवही, बुद्धि बिल्कुल घूम गई है। गीता में कहीं शिव बाबा का नाम नहीं है लेकिन शिव बाबा बोल रहा है कृष्ण के अंदर बैठ करके। बताओ ये क्या, कैसे आपने व्याख्या स्वीकार कर ली, कहां से सुन लिया? ये बात विश्वास कर लेंगे कि शिव बाबा ने बोली है लेकिन शिव बाबा जी का नाम भी नहीं है लेकिन भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, ये स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम स्पष्ट दिखता है कि भगवान, मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरे खुद का अनुभव है। हम सहारनपुर में थे, हम लोग गीता वितरण कर रहे थे, भाई ब्रह्म कुमारी की माता जी आ गई, कुछ लोग चेहरे से फ्रस्टू दिखते हैं, फ्रस्टू समझ रहे, जीवन से एकदम दुखी, हाँ फ्रस्ट्रेटेड, और बोले परम सत्य पर ब्रह्म क्या है, हमने कहा पर ब्रह्म कृष्ण है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप दुनिया में झूठ फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ब्रह्म एक ब्रह्म परात्पर ब्रह्म है और उसके ब्रह्म, क्या ठीक है आप जाइए। अब देख रहे एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पूरी तरह भ्रमित है। गीता में एकदम स्पष्ट दिखा दो कि पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि पर ब्रह्म जो है वो भगवान कृष्ण। तो ये समझने आना चाहिए कि हम लोगों को कृपा प्राप्त है इसलिए मति भगवान में जा रही ठीक प्रकार से। समझ में आ रही है, पढ़िए।
भगवत गीता से हम इस सारे तथ्यों को जान सकते हैं, अतः हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान किस तरह निर्विशेष हैं। जहां तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अद्वैतवादियों का यह आरोपित सिद्धांत मिथ्या है। यहाँ स्पष्ट है कि परम सत्य भगवान कृष्ण के रूप और व्यक्तित्व दोनों है।
अब अगर आप चाहें तो मैं चैतन्य चरितामृत से एक लीला सुना सकता हूँ जिसमें ये वर्णन हो, एक वर्णन है कि शास्त्र के व्यक्ति किस प्रकार से भगवान को नहीं समझ पाता है। अगर आप थक ना गए हो तो भूख खा के आ जाओ। यस, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, अगर कोई किसी को थकान वगैरह है ठीक है, थोड़ा सा तो मतलब 15 मिनट लगेगा, बहुत तात्पर्य नहीं पढ़ाएंगे, खाली लीला बताएंगे, बहुत सुंदर है। बोलिए।
प्रश्न है, सॉरी, वो एक बात था, रामानुचार्य यमुनाचार्य का कोटेशन है ना यहाँ पर, तो वैसे ही रामानुचार्य के पास यमा एक मायावादी आते हैं तो उनसे 17 दिन का वाद विवाद होता है।
रामानुचार्य के पास,
हाँ रामानुचार्य के पास आते हैं, बाद में 17 दिन तक वो उनको हरा नहीं पाते रामानुचार्य,
हाँ।
वो कहीं ना कहीं से कोट करते शास्त्र से, बाद में वो ऑलमोस्ट हारने वाले रहते हैं और तो शाम हो जाती है और चले जाते हैं। फिर अपने आश्रम के जो विग्रह हैं उनसे प्रार्थना करते हैं देवराज जी से की,
yes.
कि भगवान आप ही के शास्त्र में इतने इतने सारे चीज है कि वो समझ में।
रामानुजाचार्य जी प्रार्थना करते हैं और अगले दिन रामानुजाचार्य जी का तेज इतना अद्भुत होता है कि वो तेज को देख के सरेंडर करता है, सारे आर्ग्यूमेंट समाप्त, सब समाप्त। एक छोटी सी लीला है और ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है कि किस इंस्ट्रक्टिव मतलब शिक्षाप्रद है, किस प्रकार से भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। लीला तो बहुत विस्तार में है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जगन्नाथ जी को महाप्रभु संन्यास लेकर बंगाल से पुरी जाते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करके बेहोश हो जाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य वह प्रताप रुद्र के मुख्य पुरोहित कह सकते हैं, पुरोहित थे, और वह समझ जाते हैं, इतने शास्त्रज्ञ थे, उनको भक्ति के बारे में पता था कि अष्ट सात्विक विकार क्या होते हैं। जो जगन्नाथ जी के पंडित थे महाप्रभु को मारना चाहते थे, मतलब डंडे से मारना चाह रहे थे, उस वजह से कोई भावुक व्यक्ति आ गया, लेकिन नहीं 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 वो समझ गए कि अष्ट सात्विक विकार है, वो अपने घर में लेके गए। उसके बाद भक्त उनके पीछे पीछे आए, नित्यानंद प्रभु इत्यादि सब लोग आए, और उसके बाद वह महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते सार्वभौम भट्टाचार्य घर में गए, तो उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन किया तो महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। ऐसे करके आगे लंबी कथा है, और उनके एक संबंधी थे, साले कहेंगे, ब्रदर इन लॉ, उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य, पटनायक ने गोपीनाथ आचार्य। तो उनको सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि आप इनको इनके रहने की व्यवस्था करिए, नहाने की व्यवस्था करिए, सारा कुछ जल पात्र कहाँ मिलेगा सबकी व्यवस्था करिए। फिर अगले दिन गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का मंगल आरती दर्शन कराने के लिए लेके गए, और उसके बाद वह सार्वभौम भट्टाचार्य जी के पास गए, और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं ये सन्यासी बहुत नम्र है और ये बहुत सुंदर दिखता है, मेरा प्रेम इसके प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है, इसने कौन से संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करी है, उसका नाम क्या है? तो गोपीता आचार्य ने कहा कि ये इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और इनके सन्यास गुरु हैं केशव भारती। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा श्री कृष्ण तो अच्छा नाम है लेकिन ये भारतीय संप्रदाय में है, ये तो मध्यमवर्ती संप्रदाय, सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय सन्यास संप्रदाय नहीं है। तो गोपीनाथ आचार्य जी ने कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनको बाह्य कृत्यों पर कुछ निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, उनको किसी श्रेष्ठ संप्रदाय से संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। अब ये भगवान की महिमा समझ रहे हैं तो उसको सुने ही नहीं भट्टाचार्य जी, देखिए सुने ही नहीं इस बात को। भट्टाचार्य जी कहते हैं अरे चैतन्य महाप्रभु तो अभी बड़े युवावस्था में इतने सुंदर हैं, ये संन्यास को कैसे पालन कर पाएंगे? मैं भट्टाचार्य जी कहते हैं मैं इनको वेदांत का दर्शन सुनाऊंगा ताकि यह वैराग्य में स्थित रह सके और निर्विशेष ब्रह्म के पथ पे आगे बढ़ सके। देखिए किस प्रकार से वो सोच रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा करता हूं मैं इनकी दोबारा संन्यास दीक्षा करवाता हूं। देखिए क्या भ्रमित हो रहे हैं। और फिर से इनको ये लाल कपड़ा दिया जाएगा ताकि ये उच्चतर संन्यास संप्रदाय में संन्यास ले सके। जब ये गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त ने सुना तो उनको बड़ा दुख हुआ और गोपीनाथ आचार्य जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा अरे भाई भट्टाचार्य आप महाप्रभु की महानता को नहीं समझ सकते हो, जो भगवान के गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वो सब महाप्रभु में बिल्कुल प्रकृष्ट रूप से मतलब अच्छे रूप से व्यक्त हैं। प्रकृष्ट शास्त्र है, प्रबलय शास्त्र है, आपने देखा था ना यमुनाचार्य जी भी कहते हैं शास्त्र में भगवान के गुण वर्णित हैं लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी आप इतने शास्त्रज्ञ हो, आप जानते हो कि कहते हैं निग्रोध परिमंडल ये गुण होता है, परिमंडल 32 गुण होने चाहिए, कोई भगवान का अवतार है तो उसमें होने चाहिए, वो सारे भगवान चैतन्य महाप्रभु के मतलब दिव्य वपु में परिलक्षित थे, वो देख भी रहे थे फिर भी नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी इतने महान थे, थोड़ा बता देना चाहता हूँ इतनी महानता, ये एक जगह पढ़ने गए थे और वहां के व्यक्ति क्या पढ़ने गए थे, न्याय पढ़ने गए थे और वो किताब को शेयर नहीं करते थे जो पढ़ाने वाले थे, क्या नाम था, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, लेकिन जो भी थे वाचस्पति करके व्यक्ति थे वो, तो उन्हें सारी किताब याद कर ली याद करके और अपना स्कूल खुद चालू कर दिया, इतने शक्तिशाली थे, इतने इतने प्रभावशाली थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। तो सब समझ रहे थे, इसे कहते हैं एक विद्या कहते हैं जिसके आप मतलब लोगों के हाथ के चिन्ह और शरीर के चिन्ह देख करके उनके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है ना एस्ट्रोलॉजी ने एक का से नाम होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। तो सब देख रहे थे भगवान के साक्षात अवतार के गुण हैं, हाँ आजाम लंबू जो बजाए हैं उनके हाथ जो है वो घुटने तक जाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर उनके सब सब कुछ देखने के बाद भी वे समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है उसके बाद वो कह रहे हैं तो हाँ क्या बात कर रहा था, हाँ, भगवान है तो समझ नहीं पा रहे। तो अब सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शिष्यों ने कहा तुम किस प्रमाण पे ये कह रहे हो कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है? प्रभुपाद जी और उसके बाद वो कहते हैं कि हम तो युक्ति और तर्क के द्वारा परम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, युक्ति मतलब तर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं नहीं, भगवान को उनकी कृपा के द्वारा ही समझा जा सकता है, ये युक्ति अंदाजा अनुमान के द्वारा भगवान को हम कभी नहीं समझ सकते। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है उसके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करता है तब वह भगवान को समझ सकता है। फिर ये श्लोक कोट करते हैं अथापि ते देव पदां भुजद्वयम् इत्यादि। उसके बाद वह सार्वभौम भट्टाचार्य को कहते हैं कि देखिए आप इतने बड़े शास्त्रज्ञ हो, आपके बहुत सारे शिष्य भी हैं, फिर भी क्योंकि भगवान की कृपा आपको रंच मात्र भी प्राप्त नहीं है इसलिए आपके घर में है भगवान और समझ नहीं पा रहे। देखो आप दूरी मत जाइए लेकिन आप सोचिए हम कृष्ण बलराम का विग्रह भगवान यहाँ पे हैं, कितना हम समझ पाएंगे वो भगवान? जितनी मात्रा में हमारी भक्ति है उतनी मात्रा में समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी के प्रवचन में आपने ट्रांसक्राइब भी किया था कि देखो कुछ लोग कहेंगे ये मूर्ति है और कुछ लोग अमेरिका से हजारों डॉलर खर्च करके यहाँ दर्शन करने के लिए यार, जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, जो भगवान को मानता ही नहीं, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं, तो उसको कृपा नहीं है इसलिए वो भगवान को नहीं समझ पा रहा है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, शास्त्र का ये सिद्धांत ही है कि जो भगवान की केवल शास्त्र के ज्ञान के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकता। अब सार्वभौम भट्टाचार्य जिसे कहते हैं, देखो गोपीनाथ आचार्य बड़े सावधान होकर के बोलो, यह क्या प्रमाण है कि तुम पर कृपा हो गई है? आप कह रहे हो मुझ पर कृपा नहीं हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, यह क्या प्रमाण है कि आप पर कृपा हो गई? कितना सुंदर आपस में डिस्कशन चल रहा है। तो गोपीनाथ आचार्य कहते हैं कि भगवान का ज्ञान ही उनकी कृपा का सूचक है। और देखिए जीव गोस्वामी पाद की टीका में क्या पढ़े थे, कृपा होगी तो दिव्य ज्ञान होगा, दिव्य ज्ञान होगी तो उपासना होगी, उपासना होगा तो भगवान का अनुभव प्राप्त होगा। बहुत सुंदर, कहीं कोई भेद नहीं देख पा रहे। तो कह रहे हैं कि आपने भगवान चैतन्य महाप्रभु में भगवान के सारे गुण देखे हैं उनके वपु में, फिर भी आप, और आपने देखा भी है किस प्रकार से दिव्य उन्माद उनके शरीर में उत्पन्न हो रहा है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये दिव्य पुरुष हैं या भगवान हैं। समझ में आई बात? भगवान साक्षात घर में है। कभी सोचिए साक्षात कृष्ण आपके पास हो और ना समझ पाए। ध्यान दीजिएगा कि विदुर जी भी इस बात को बोलते हैं, क्षमा कीजिएगा उद्धव जी बोलते हैं विदुर जी को कि मैं बहुत दुखी हूं कि कृष्ण साक्षात भगवान के रूप में थे, फिर भी बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाए। यहां तक यदुवंश के लोग भी समझ नहीं पाए, मात्र उनको ही समझे कि परमात्मा है लेकिन भगवान के रूप में नहीं समझ पाए, ऐसा वो बोलते हैं। तो यानी कि क्या प्रमाण है कि कृपा प्राप्त नहीं हुई? सीधे सीधे भगवान के जो दिव्य गुण है, जो रूप होना चाहिए, वो सब देख रहे हैं महाप्रभु में और फिर भी वो नहीं समझ पा रहे कि भगवान। अरे हमने भी आठवीं में पढ़ा था कि एक चैतन्य महाप्रभु हुए थे लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे, जो हिस्टोरियन था उसने लिखा नहीं कि ये भगवान है। एक भक्त ने आईआईटी में एक भक्त पूछा, अरे तुम लोग सबके आगे लॉर्ड लगा देते हो, चैतन्य महाप्रभु के आगे भी लॉर्ड लगा दिया, इनको भी भगवान बना दिया। अरे तो हम लोग भगवान बना नहीं रहे, वो भगवान है, वो समझ नहीं पाते इस बात। उसके बाद वो कहते हैं कि जो बहिर्मुख व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान के बारे में नहीं समझ सकता है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी बड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हम तो मित्र की तरह शास्त्र के अनुसार चर्चा कर रहे हैं, आप गुस्सा मत होइए, हम तो केवल शास्त्र के अर्थ पे, शास्त्र के अनुसार सोच बोल रहे हैं, आप कोई अपराध मत दीजिए। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु निश्चित रूप से महान है, एक बहुत महान भक्त है, लेकिन हमें भगवान विष्णु का अवतार नहीं स्वीकार कर सकते क्योंकि कलयुग में तो कोई भगवान के अवतार का वर्णन है नहीं। और उसके बाद वो प्रमाण देते हैं कि भगवान को त्रियुग कहा जाता है क्योंकि वह तीन युग में अवतरित होते हैं और कलयुग में अवतरित नहीं होते। तो अब गोपीनाथ आचार्य जब ये सुने तो उनको बहुत बहुत खराब लगा। तो कहते हैं आप अपने को वैदिक जो शास्त्र का ज्ञाता मानते हैं, आप श्रीमद् भागवतम और महाभारत के पुराण को प्रमाण को नहीं समझते, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महाभारत के अनुसार भगवान सीधे सीधे नहीं आते हैं कलयुग में, इसलिए उनको त्रियुग कहा जाता है। उनकी लीला अवतार के रूप में कलयुग में नहीं आते हैं इसलिए उनको त्रियुग कहा जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन इसलिए कहा जाता है, लेकिन हर युग में एक युगावतार होता है, तो आप सब जानते हो ना, और जो इस युग धर्म का परिवर्तन करता है। लेकिन तुम्हारा जो महाप्रभु युगावतार हैं और इस प्रकार से जो तुम्हारा तर्क और युक्ति का तो उसमें आश्चर्य ली हो कि तुम्हारे सारे ज्ञान को ढक दे रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे इस बात को। और उसके बाद वह कोट करते हैं क्या है वो जो गर्ग मुनि गर्गाचार्य जी की बात थी, जो भगवान कृष्ण का वो नामकरण कर रहे थे, पीत वर्ण क्या था, शुक्ल वर्ण इदानीम कृष्णताम कथा, मतलब पीत वर्ण में आते हैं, शुक्ल वर्ण में आते हैं और श्याम वर्ण में आते हैं और श्वेत वर्ण में आते हैं। तो अब देखो ये पीत वर्ण में है कि नहीं है ना वर्णन, तो वह है, ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम से प्रमाणित कर रहे हैं। देखिए गोपीनाथ आचार्य जी भी ऐसा नहीं कि केवल भागवतता में बोल रहे हैं, वह शास्त्र का प्रमाण दे रहे हैं लेकिन शास्त्र के साथ साथ भगवान की कृपा है इसलिए समझ पा रहे हैं। क्या इस भागवत के श्लोक को सार्वभौम भट्टाचार्य जी नहीं समझते थे या नहीं जानते थे? सब जानते थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था ये बात। और उसके बाद वह बहुत प्रसिद्ध श्लोक करते हैं, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जनते ही सुमेत, इत्यादि बहुत सारे श्लोक को करते हैं। उसके बाद वह महाभारत, ये श्रीमद् भागवतम के बाद महाभारत का वह श्लोक कोट करते हैं कि वह संन्यास लेंगे, वह शांत रहेंगे और वह क्या श्लोक है, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वर्णांगस चंदनागदि संन्यास कृत शमः शांतो निष्ठा शांति परायणा। कि चैतन्य महाप्रभु जो है उनका स्वर्ण वर्ण होगा और उनका पूरा जो कांति होगी वह तप्त तप्त कंचन मतलब तप्त सोने के समान होगा। इस प्रकार से वो शांत होंगे और संन्यास लेंगे। ये सारा कुछ वर्णन है भगवान के। और कौन से अवतार ने संन्यास लिया मुझे तो याद नहीं आ रहा है। और कौन सा वामदेव सन्यासी नहीं, ब्रह्मचारी है। ऋषभ देव कह सकते संन्यास है लेकिन वह तो कलयुग में अप्लाई नहीं होता। तो इस प्रकार से उनका वर्णन आता है। ये महाभारत की उक्ति है। फिर गोपीनाथ आचार्य कहते हैं तुम्हारे सामने शास्त्र बोलने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे आगे एते कथार नहीं प्रयोजन। तुम्हारे सामने ये कथा बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। ऊसर भूमि ते ये ना बीज रोपण। जो भूमि ऊसर है उसमें बीज देने से क्या फायदा होता है। तो तुम्हारी बुद्धि जो है वह इस प्रकार से बहुत सुंदर है। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं कि जब भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे तब तुम्हें सारे सिद्धांत अपने आप समझ में आएंगे और तुम खुद शास्त्रों का उदाहरण दे करके उनके स्थापित करोगे कि भगवान है। इस प्रकार से तुम्हार ये शिष्य कहे कुतर्क नानावाद इहार की दोषा ई मायार प्रसाद। कह रहे तुम्हारे जितने जो शिष्य हैं ये जो कुतर्क दे रहे हैं कि महाप्रभु भगवान नहीं है ये केवल मायावाद इस दर्शन का कृपा है। समझे? मायावाद दर्शन की कृपा जिसको प्राप्त होगी उसके सामने भी भगवान होंगे तो वह समझ नहीं पाएगा। उसके बाद आगे वो बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें वही कहते हैं कि एक ब्राह्मण जो है वह कुछ भी बात बोलेगा वह स्थापित हो जाती है जगत में। बहुत अच्छी आप लोग पढ़ सकते हैं। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला का छठा अध्याय है। बहुत फेवरेट है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात थोड़ा बता देता हूँ कि कृपा कैसे होती है। उसके बाद महाप्रभु के पास जब बात बोली जाती तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं साहब, भाम भट्टाचार्य जी के प्रति का मेरे प्रति बहुत वात्सल्य है इसलिए मेरा हित सोचते हैं। और फिर साहब भाम भट्टाचार्य जी कहते भी हाँ हाँ मैं अब आपको वेदांत सुनाऊंगा। और फिर 7 दिन तक वेदांत बोलते रहते हैं और महाप्रभु नीचे बैठ, महाप्रभु ऊपर बैठे होते हैं वो नीचे बैठ गए क्योंकि महाप्रभु सन्यासी हैं। ऊपर वो बैठे हैं और वो नीचे से प्रवचन कर रहे हैं और और महाप्रभु कुछ नहीं बोल रहे, एकदम चुप सुन रहे हैं। और फिर उसके बाद 7 दिन के बाद, अब देखिए मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ 1 घंटे, आप लोग एकदम चुप बैठे रहे। कभी आपको ऐसा लग रहा है ऑडियंस एकदम चुप हो जाती है? तो कभी कभी ऑडियंस एकदम चुप हो जाती है तो मैं पूछता भी हूँ आप लोगों को, भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए और अब देखिए महाप्रभु क्या बोले। बहुत ही विनोदपूर्ण अद्भुत है महाप्रभु। महाप्रभु कहते हैं देखिए जब आप वेदांत के सूत्र बोलते हैं तो उसका अर्थ तो मुझे एकदम सूर्य के समान स्पष्ट होता है लेकिन जो आप व्याख्या कर रहे हैं वह सूर्य को बादल की तरह ढक दे रही है। अब सोचिए कि सार्वभौम भट्टाचार्य जिनके इतने सारे शिष्य थे, यहाँ तक कि सन्यासी लोग भी उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे, उनको यह बोल देना और कितने इंग्लिश में कहेंगे पोलाइटली, मतलब क्या बोलेंगे, कितने प्रेम से बाबा एकदम से कहते पानी पानी कर दिया। पूरा 7 दिन तक प्रवचन किया, कोई व्यक्ति कहे आपकी व्याख्या केवल बादल की तरह है, सब कुछ कवर कर लिया। किसी की हिम्मत नहीं थी सार्वभौम भट्टाचार्य से इस प्रकार से बोलने की, लेकिन महाप्रभु कहते हैं। फिर आगे वो बहुत सारे वाद विवाद करते हैं, छल तर्क इत्यादि करते, महाप्रभु सब काट के खत्म कर देते। और फिर महाप्रभु तो वो समझ जाते हैं कि ये भगवान ही है। फिर वह मतलब उनको समझ में आने लगता है कि महान है भगवान है। और वो कहते हैं कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये व्याख्या कीजिए इसकी आत्मरामस्य श्लोक की। तो महाप्रभु कहते हैं पहले आप व्याख्या कीजिए। तो वो 9 तरह से व्याख्या करते हैं और फिर उसके बाद महाप्रभु 18 तरह से व्याख्या करते हैं और उनमें से 9 अर्थ जो है सार्वभौम भट्टाचार्य जी की वो छोड़ करके 18 व्याख्या। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ जाते हैं कि भगवान के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस प्रकार से कर सके, उनकी शरणागत हो जाते हैं। फिर भगवान उनको आगे जाकर के अपना वो षडभुज रूप दिखाते हैं, ऐसे कृपा करते हैं। तो ये तब वो समझ पाते हैं कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से भगवान। तो मैंने लीला क्यों सुनाई? एक महान शास्त्रज्ञ भी जो ना सिर्फ पढ़ रहा हो पढ़ा भी रहा हो, अगर भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं है तो गीता भागवत पढ़ के भी समझ में नहीं आएगा, उसकी बुद्धि भ्रमित कर देंगे भगवान। इसलिए पढ़ो भागवत गया वैष्णव स्थान, वैष्णव के स्थान में वैष्णव के चरणों में पढ़ करके हम भगवान को समझ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? यस प्रभु।
कुछ मैंने पढ़ा नहीं लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ सर्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी की सेवा करते थे।
हाँ, जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, सब कुछ ज्ञान था लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि महाप्रभु भगवान है। इट्स अमेजिंग। लीला में तो समझ स्पष्ट समझ रहे हैं ना, यहां समझना चाहिए कि जब भगवान के ऊपर कृपा होती है, जैसे चतन चरतामित में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार करता है, जैसे कोई व्यक्ति विष्णु को स्वीकार करे लेकिन कृष्ण को स्वीकार नहीं करे तो असुर है। हाँ, ये आप स्वयं पढ़े ना चतन चरतामित में, ऐसे ही कोई कृष्ण को स्वीकार करे और महाप्रभु को स्वीकार नहीं करे तो वही है। तो जो भगवान की कृपा प्राप्त किया है वही भगवान को समझ सकता है। भगवान के किसी भी अवतार को एक समान मनुष्य मानना एक अपराध है। ठीक है, कोई और प्रश्न? चलिए स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद्गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।